आगे सबक देखिए भाई, बाबु मा युहदिसु सारिकु फिस्सरिका वमन सरका सौबन फशक्कहू फिद्दारि बिनिस्फैनि सुम्मा अखरजहू वहुव युसावी अशरत दराहिम कुतिअ وعن ابي يوسف رحمه الله تعالى انه لا يقطع لان له فيه سبب الملك وهو الخرق الفاحش فانه يوجب القيمه وتملك المضمون وصار كالمشتري اذا سرق مبيعا فيه خيار للبائع. गुज़श्ता सबक में हम मसला पढ़ रहे थे कि अगर गुलाम जो है वो चोरी का इकरार कर ले तो ये गुलाम या तो अब्दे महजूर होगा या ये अब्दे माजून लहू होगा, और फिर वो माल जिसके बारे में वो चोरी का इकरार कर रहा है या तो वो माले मुअय्यन होगा या माले गैरे मुअय्यन होगा. तो आपने पढ़ा था कि अगर अब्दे महजूर इकरार कर ले किसी मुअय्यन माल के बारे में कि ये माल मैंने फला आदमी से चोरी किया था, गुलाम कौन सा है? अब्दे महजूर. और माल किस किस्म का है? मुअय्यन है. तो इस सूरत में इमाम साहब फरमाते हैं इस गुलाम का हाथ भी काटा जाएगा और वो जो माल है वो भी मसरूक मिनहू को वापस किया जाएगा. जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस गुलाम का हाथ तो काटा जाएगा, अलबत्ता वो माल जो है वो आका ही का है, वो मसरूक मिनहू को वापस नहीं किया जाएगा. जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह दोनों हुक्मों में इमाम साहेब से इख्तिलाफ करते हैं. चुनाचे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस गुलाम का हाथ भी नहीं काटा जाएगा और वो मुअय्यन माल जो है वो भी मसरूक मिनहू को वापस नहीं किया जाएगा बल्कि वो भी आका ही का है. और यही कौल है इमाम जुफर रहमहुल्ला का भी. और साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि ये इख्तिलाफ उस सूरत में है जब आका इस गुलाम को झुटला दे कि ये झूठ बोल रहा है, ये दिरहम या ये माल तो मेरा अपना है. और जबकि इसके मुकाबले में अगर वो माल गैर मुअय्यन है, अब्द महजूर चोरी का इकरार कर रहा है और माल को वो हलाक कर चुका है या वो गैर मुअय्यन है, तो इस सूरत के अंदर बिल इत्तेफाक हमारे तीनों अइमा के नजदीक इस गुलाम का हाथ काटा जाएगा. और अगर अब्द माजून लहू हुआ तो फिर उसके अंदर दोनों सूरतों में हाथ काटा जाएगा हमारे तीनों अइमा के नजदीक. यानी चाहे माले मुअय्यन की चोरी का वो इकरार करे चाहे माले गैर मुअय्यन की चोरी का इकरार करे, दोनों सूरतों में अब्द माजून लहू का हाथ काटा जाएगा. जबकि इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि इन चारों सूरतों में से किसी एक सूरत के अंदर भी गुलाम का हाथ नहीं काटा जा सकता. वजह यह कि उनका जाबता है कि हुदूद और किसास के मसले के अंदर गुलाम का इकरार सिरे से मोतबर ही नहीं है, गुलाम का ये इकरार सही ही नहीं है. जब ये इकरार सही नहीं तो गुलाम का हाथ भी नहीं काटा जा सकता, और अगर किसास का इकरार किया है तो गुलाम को कत्ल भी नहीं किया जा सकता. वजह यह कि गुलाम जो है वो आका का माल है, तो अगर गुलाम को कत्ल करें तब भी आका का नुकसान और अगर गुलाम का हाथ काटें तब भी आका का नुकसान है. तो मालूम हुआ गुलाम ये जो इकरार कर रहा है ये आका के खिलाफ है, इसमें आका का नुकसान हो रहा है. और किसी दूसरे के खिलाफ जो इकरार होता है वो कबूल नहीं किया जा सकता, लिहाजा हुदूद और किसास के मसले में गुलाम का इकरार सही नहीं. ये इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं. अलबत्ता वो फरमाते हैं कि माल के सिलसिले में अब्द महजूर का इकरार तो सही नहीं है लेकिन अब्द माजून लहू का इकरार सही है, लिहाजा अगर वो माल मुअय्यन की चोरी का इकरार कर रहा है तो वो माल मसरूक मिनहू को वापस किया जाएगा, और अगर अब्द माजून लहू माल गैर मुअय्यन की चोरी का इकरार कर रहा है तो वो इस पर जमान आएगा, वो इसको अदा करना पड़ेगा. वजह यह है कि यह माजून लहू का इकरार माल के सिलसिले में इसलिए मोतबर है कि खुद आका ने उसको इस इकरार की इजाजत दी है. आका ने जब उसे तिजारत की इजाजत दे दी तो गोया इकरार की भी इजाजत दे दी, क्योंकि तिजारत के अंदर कभी नफा होता है तो कभी नुकसान होता है. तो अगर गुलाम का इकरार मोतबर ना हो फिर तो कोई गुलाम के साथ तिजारत ही नहीं करेगा, कि अगर हमारा माल इस गुलाम के ऊपर आ गया फिर तो वो डूब ही जाएगा क्योंकि इसका इकरार भी मुआतबर नहीं। तो मालूम हुआ अब्दे माजून लहू को खुद आका ने इख्तियार दिया है माल का इकरार करने का, लिहाजा उसके माल का इकरार सही है भाई। जबकि हम उसके जवाब में कहते हैं कि गुलाम अगर हुदूद या किसास का इकरार करे तो वो भी मुतबर है, इस वजह से कि उसका ये इकरार आदमी होने की हैसियत से है और आदमी जो है वो तो मुकल्लफ है, शरीयत ने उसको अहकाम शरईया का जिम्मेदार बनाया है। और जिस तरह आजाद आदमी पर इबादत जरूरी है इसी तरह गुलाम पर भी इबादत जरूरी है, और जिस तरह आजाद आदमी के लिए गुनाहों से बचना जरूरी है इसी तरह गुलाम के लिए भी गुनाहों से बचना जरूरी है। तो लिहाजा इस गुलाम ने चोरी की है, एक जुर्म किया है, तो उसका यह इकरार आदमी होने और मुकल्लफ होने की हैसियत से मोतबर है। और फिर उसके बाद यह इकरार मुतअद्दी हो जाएगा इस गुलाम के माल होने की तरफ भी, क्योंकि यह आदमी होने के साथ साथ माल भी है, यानी माल होने के एतबार से भी इसका इकरार सही है भाई। और नीज इस इकरार में दिलों में कोई बदगुमानी भी नहीं आती कि गुलाम आका को नुकसान देना चाहता है, वजह यह कि यहां पर गुलाम का जो नुकसान है वो आका से भी बढ़कर है। आका का तो सिर्फ माल जाएगा लेकिन गुलाम की या तो जान चली जाएगी या उसका उज्व चला जाएगा। तो इस किस्म का इकरार जिसमें आदमी का अपना नुकसान ज्यादा हो वो उसकी अपनी जात के बारे में भी मोतबर है और तबअन गैर के लिए भी मोतबर है भाई। और उसके बाद फिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील जिक्र फरमाई साहिब हिदाया ने। मैंने आपको बतलाया था कि इस मसले के अंदर हमारे अइमा का जो इख्तिलाफ है उसकी बुनियाद एक जाबते के अंदर इख्तिलाफ पर है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जाबता यह है कि चोरी के मसले में माल असल है और कता ताबेअ है, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक चोरी के मसले में कता असल है और माल उसके ताबेअ है, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक कि माल और कता दोनों असल हैं, दोनों में से एक भी दूसरे के ताबेअ नहीं है। चुनांचे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अब्द महजूर के बारे में फरमाते हैं कि माल के सिलसिले में अब्द महजूर का इकरार मोतबर नहीं, क्योंकि उसका यह इकरार दरअसल आका के खिलाफ है। चुनांचे इसीलिए अगर अब्द महजूर गसब का इकरार कर ले तो वह इकरार भी सही नहीं है। तो जब माल के सिलसिले में इस अब्द महजूर का इकरार मोतबर नहीं तो यह जो मुअय्यन माल जिसके बारे में उसने चोरी का इकरार किया था यह आका ही का है, ये आका ही का है। तो मालूम हुआ ये आका के माल की चोरी का इकरार कर रहा है और आका के माल की चोरी के अंदर तो गुलाम का हाथ नहीं काटा जा सकता। और नीस इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की बात की ताइद इस बात से भी होती है कि उनके नजदीक माल असल है और कता ताबे है, लिहाजा अगर कोई आदमी सिर्फ माल के लिए खुसूमत करे तो उससे कता भी साबित हो जाएगी, अगरचे वो कता का इनकार करे फिर भी कता साबित हो जाएगी। लेकिन अगर इसका बरअक्स हो और कोई आदमी यह कहे कि मैं सिर्फ कता के लिए खुसूमत करता हूं माल के लिए मैं खुसूमत करता ही नहीं, तो इस सूरत में खुसूमत नहीं सुनी जा सकती, मालूम हुआ माल असल है और कता उसके ताबे। और नीस माल असल है और कता ताबे है इसका पता इस बात से भी चलता है कि खुसूमत के अंदर ऐसा हो सकता है कि माल साबित हो जाए और कता साबित ना हो। मसलन एक शख्स ने एक आदमी पर चोरी का दावा किया लेकिन गवाह के अंदर एक मर्द और दो औरतों को पेश कर दिया, तो इस एक मर्द और दो औरतों की गवाही से माल तो साबित हो जाएगा लेकिन कता साबित नहीं हो सकता, क्योंकि हुदूद के अंदर सिर्फ मर्दों की गवाही कबूल की जाती है। या इसी तरह एक आदमी जो है वो चोरी का इकरार कर लेता है और फिर बाद में रुजू कर लेता है, तो इस रुजू की वजह से कता तो साकित हो जाएगा लेकिन माल नहीं साकित होगा, मालूम हुआ माल असल है और कता उसके ताबे है भाई। तो लिहाजा जब अब्द महजूर का इकरार इस माले मुअय्यन के बारे में सही नहीं है तो फिर कता के बारे में भी इसका इकरार मोतबर नहीं, लिहाजा इसका हाथ भी नहीं काटा जा सकता। जबकि अब्द माजून लहू जो है उसका इकरार माल के बारे में सही है क्योंकि खुद आका ने उसको इस इकरार की इजाजत दी है, तो जब अब्द माजून लहू का इकरार माल के बारे में सही है तो कता के बारे में भी सही हो जाएगा क्योंकि कता माल के ताबे है। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर गुलाम ने दो चीजों का इकरार किया है और दोनों चीजें असल हैं, दोनों में से एक भी दूसरे के ताबे नहीं। एक इकरार तो इसने कता के बारे में किया है और हम बयान कर चुके कि यह इकरार मोतबर है क्योंकि यह इकरार उसने आदमी और मुकल्लफ होने की हैसियत से किया है, और दूसरा इकरार इसने आका के खिलाफ किया है और वो माल का इकरार है और वो मोतबर नहीं। गुलाम का इकरार आका के खिलाफ माल के हक में सही नहीं है, तो लिहाजा माल तो साबित नहीं होगा, अलबत्ता कता साबित हो जाएगी और कता माल के बगैर भी साबित हो सकती है। जैसे एक आजाद आदमी इकरार करे कि ये जो जैद के पास ये जो कपड़ा है ये मैंने अमर से चोरी किया था और हाल यह है कि आजैद कह रहा है कि ये मेरा अपना कपड़ा है, तो इस इकरार की वजह से इस आजाद आदमी का हाथ तो काटा जाएगा, अलबत्ता वो कपड़ा जैद से लेकर वापस अमर को नहीं दिया जाएगा। इसी तरह इस गुलाम के मसले के अंदर भी इस गुलाम का हाथ तो काटा जाएगा लेकिन वो माल मुअय्यन उस मसरूक मिनहू को वापस नहीं किया जाएगा। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कता के मसले के अंदर कता असल है और माल ताबिया है, और कता के बारे में तो हम बता चुके कि कता के लिए गुलाम का इकरार सही है इस वजह से कि यह इकरार उसने आदमी और मुकल्लफ होने की हैसियत से किया है। जब कता के सिलसिले में गुलाम का इकरार सही तो माल तो उसके ताबिया है तो माल के अंदर भी उसका इकरार सही हो जाएगा भाई। और गुलाम ने यह जो इकरार किया है यह बकाए सरिका की हालत में यह इकरार किया है और हालत बका के अंदर माल जो है वो कता के ताबे हो जाता है, यहां तक कि जब हाथ काट दिया जाए तो माल की इस्मत साकित हो जाती है। मालूम कता असल है और माल ताबे है, और वो चोर चाहे वो सारा माल ही क्यों ना खर्च कर दे और खत्म कर दे फिर भी चोर का हाथ काटा जाता है, मालूम हुआ कता असल है और माल उसके ताबिया है। और बाकी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने इस गुलाम के मसले को आजाद आदमी के मसले पर कियास किया तो उसका भी जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि गुलाम के मसले को आजाद आदमी के मसले पर कियास नहीं किया जा सकता। आजाद आदमी के मसले में उस आदमी का हाथ तो काटा गया लेकिन वो कपड़ा जैद से लेकर अमर को वापस नहीं किया गया, इसलिए क्योंकि हो सकता है जैद ने ये कपड़ा अमर के पास बतौर अमानत के रखवाया हो, और आप पढ़ चुके हैं कि मुदा से भी अगर कोई शख्स चोरी कर ले तो उसका भी हाथ काटा जाता है भाई। लेकिन गुलाम के मसले में अगर आप ये कहें कि यह माल मसरूक मिनहू को वापस नहीं किया जाएगा तो इसका तो मतलब है गुलाम ने अपने आका का माल चोरी किया था, और गुलाम अपने आका के माल को चोरी करे फिर तो उसका हाथ नहीं काटा जाता, चाहे वो आका से चोरी करे चाहे आका के मुदा से चोरी करे। लिहाजा आपका इस गुलाम के मसले को आजाद आदमी के मसले पर कयास करना सही नहीं। बात समझ में आई? फिर समझो, फिर समझो। देखो आजाद आदमी ने चोरी का इकरार किया है, उसमें उसका हाथ काटा जाएगा लेकिन वो कपड़ा जैद से लेकर अमर को नहीं दिया जाएगा क्योंकि हो सकता है अमर मुदा हो, कपड़ा जैद ही का था लेकिन उसने अमर के पास बतौर अमानत के रखवाया था। जबकि गुलाम के मसले में अगर आप ये कहते हैं जैसे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का मजहब है कि गुलाम का हाथ काटा जाएगा और वो माल मसरूक मिनहू को वापस नहीं किया जाएगा तो फिर इस सूरत में तो कहना पड़ेगा कि गुलाम ने अपने ही आका का माल चोरी किया था, अपने ही आका का माल चोरी किया था, और अपने आका का माल चोरी करने की सूरत में तो गुलाम का हाथ नहीं काटना चाहिए। हालांकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गुलाम का हाथ काटा जाएगा, तो दोनों मसलों में फर्क है, तो एक को आप दूसरे पर कियास नहीं कर सकते। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर आका गुलाम की तस्दीक कर दे, गुलाम ने कहा यह माल मैंने चोरी किया है फलां से और आका तस्दीक कर दे चाहे माले मुअय्यन हो चाहे माले गैर मुअय्यन हो, तमाम सूरतों के अंदर फिर गुलाम का हाथ काटा जाएगा भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर चोर का हाथ काट दिया गया और वो चीज अभी तक उस चोर के कब्जे में मौजूद है तो वो मालिक को वापस दिलाई जाएगी क्योंकि उस मालिक की मिल्कियत अभी भी उस चीज में मौजूद है। और मैंने आपको बतलाया था कि चाहे ये चोर जो है वो चीज किसी को हिबा कर चुका हो या किसी को बेच चुका हो फिर भी उस चीज को वापस दिलाया जाएगा भाई, वो हिबा और वो बै बातिल होगी। और अगर चोर के पास वो माल हलाक हुआ है या चोर ने वो माल खुद हलाक किया है तो फिर इस सूरत के अंदर इमाम साहब से मशहूर रिवायत यही है कि चोर पर जमान नहीं आएगा, ना हलाक की सूरत में और ना इस्तेहलाक की सूरत में। अलबत्ता इमाम साहब से एक दूसरी गैर मशहूर रिवायत जो है वो हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्ला फरमाते हैं और उसके मुताबिक इस्तेहलाक के अंदर चोर से जमान लिया जाएगा, जब चोर ने खुद वो माल खर्च किया है या जाया किया है तो फिर उससे जमान लिया जाएगा। जबकि इमाम शाफई रहमहुल्ला फरमाते हैं कि चाहे हलाक हो या इस्तेहलाक दोनों सूरतों में चोर पर जमान आएगा, तो चोर का हाथ भी काटा जाएगा और उससे जमान भी लिया जाएगा। तो मालूम हुआ इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक जमान और कता इकट्ठे हो सकते हैं, जबकि मैं पहले बतला चुका हूं कि इंदल अहनाफ जमान और कता इकट्ठे नहीं हो सकते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कता और जमान इकट्ठे हो सकते हैं इसलिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग हक हैं और दोनों का सबब अलग अलग है। कता इसलिए चोर पर वाजिब होगी इसलिए क्योंकि इसने जुर्म किया है, शरीयत ने इसको चोरी से मना किया था और इसने चोरी वाला फेल किया है, और इस पर माल का जमान भी आएगा इसलिए क्योंकि वह जमान जो है वह बंदे का हक है और इसने एक बंदे का सामान उठाया था लिहाजा अब इस पर जमान भी वाजिब होगा। वो फरमाते हैं यह इसी तरह है जैसे हरम के अंदर कोई ममलूका शिकार को हलाक कर दे। मैंने आपको बतलाया था कि बैतुल्ला जो है जमीन पर अल्लाह का पहला घर है जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया, तो जैसे इस बैतुल्ला की आजमत है इसी तरह बैतुल्ला के इर्द गिर्द का जो करीब का इलाका है शरीयत ने उसकी भी ताजीम का हुक्म दिया। तो बैतुल्ला के इर्द गिर्द का यह इलाका जो है यह हराम कहलाता है, हराम के अंदर किसी को किसी किस्म की तकलीफ देने की इजाजत नहीं, हत्ता के हराम के हदूद के अंदर शिकार खेलना भी मना है, यहां तक कि हराम के अंदर दरख्तों और पौधों को काटना भी मना है। तो अब अगर कोई शख्स हरम के अंदर कोई शिकार करता है किसी जानवर को हलाक करता है तो याद रखो उस पर जुर्माना आएगा, उसको उस हैवान की मिसल कीमत जो है वो सदका करना पड़ेगी फुकारा पर। तो अब सूरत यह है कि एक आदमी ने हरम के अंदर किसी के ममलूका शिकार को हलाक कर दिया तो यहां पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस आदमी पर उस शिकार की जजा भी वाजिब होगी क्योंकि शरीयत ने मना किया था, तो बतौर शरीयत के हक के इस आदमी पर इस शिकार की जजा वाजिब होगी कि इसको इसकी कीमत फुकारा पर सदका करना पड़ेगी। और नीज यहां उस आदमी ने हकुल अब्द को भी जाया किया है, यह शिकार तो किसी का ममलूक था लिहाजा उस मालिक को भी जमान देना पड़ेगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे हराम के अंदर कोई ममलूका शिकार को हलाक कर दे तो वहां दो अलग अलग हक उसने जाया किए हैं तो दोनों के अंदर उस पर जजा वाजिब होगी भाई। या इसी तरह कोई किसी जिम्मी की ममलूका शराब पी ले तो इस सूरत में उस आदमी को हद भी लगाई जाएगी और उस आदमी पर जमान भी वाजिब होगा भाई। हम इमाम शाफी रहमतुल्लाह को जवाब देते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि कता और जमान जमा हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग हक हैं, दोनों के सबब अलग अलग हैं भाई। तो हम जवाब देते हैं कि नहीं, यहां पर एक ही हक है, दो अलग अलग हक नहीं है, क्योंकि हमने बतला दिया कि ऐन जिस वक्त चोर चोरी करने लगता है तो माल की इस्मत अल्लाह की तरह मुंतकिल हो जाती है, और जब माल की इस्मत अल्लाह की तरह मुंतकिल हुई और चोर ने इस माल को उठा लिया तो यहां पर सिर्फ अल्लाह ही का हक है, बंदे का हक है ही नहीं, लिहाजा इसलिए कता और जमान जमा नहीं हो सकते। और बाकी जो आपने मिसाल जिक्र की कि हराम के अंदर कोई ममलूका शिकार को हलाक करे तो वहां उस आदमी पर जजा भी वाजिब होगी और जमान भी देना पड़ेगा उस हैवान की कीमत का भाई। और या इसी तरह कोई जिम्मी की ममलूका शराब पी ले तो वहां पर उस आदमी पर हद भी वाजिब होगी और उस आदमी पर जमान भी वाजिब होगा उस जिम्मी के लिए। तो उनके अंदर तो वाकई दो हक हैं लिहाजा दोनों अदा करने पड़ेंगे। लेकिन यह जो चोरी का मसला है यहां हमने आपको बतला दिया कि ऐन चोरी से पहले माल की इस्मत अल्लाह की तरफ मुंतकिल हो गई तो यहां सिर्फ अल्लाह ही का हक है, बंदे का हक नहीं, लिहाजा कता के साथ जमान जमा नहीं हो सकता। अगर कता है तो जमान नहीं और अगर जमान है तो कता नहीं आ सकती। बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने हमारी दलील जिक्र फरमाई और हमारे नजदीक कता और जमान जमा नहीं हो सकते क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला गुर्मा अलस्सारिकी बादमा कुतियत यमीनहू कि चोर पर जमान नहीं है जब उसका दाया हाथ काट दिया जाए। मालूम हुआ जब हाथ काट दिया जाए फिर जमान नहीं आ सकता। और नीस अकली दलील भी साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाई कि अगर जमान को वाजिब किया जाए तो यह तो कता के मुनाफी है। जमान की अगर वाजिब आप करते हैं फिर तो कता नहीं होना चाहिए। वजह यह कि जब चोर जमान अदा करेगा तो उस माल का मालिक बनेगा और इस मालिक बनने की निस्बत उस वक्त की तरफ की जाएगी जिस वक्त चोर ने इस माल को उठाया था। तो लिहाजा इस सूरत में इस माल के अंदर मालिक होने का शुबा आ गया तो इसकी वजह से तो हद साकित हो जाएगी भाई। लिहाजा मालूम हुआ जमान चोर पर वाजिब नहीं किया जा सकता। और नीज इसलिए भी कि जिस वक्त चोर चोरी करने लगता है तो ऐन उस वक्त उस माल की इस्मत बंदे से मुंतकिल हो जाती है अल्लाह की तरफ। वजह यह है कि अगर माल की इस्मत अल्लाह की तरफ मुंतकिल ना हो तो फिर मालूम हुआ यह माल हराम ली गैरी ही हुआ और हराम ली गैरी ही तो वह है कि जो अपनी जात के एतबार से मुबाह हो और गैर की वजह से हराम हो तो इसमें मुबाह होने का शुबा आ जाएगा और जब शुबा आ जाए तो फिर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। लिहाजा हम कहते हैं ऐने चोरी से पहले माल की इस्मत अल्लाह की तरफ मुंतकिल हो गई, अल्लाह इस माल के मालिक बन गए, अब चोर का इस माल को लेना यह हराम ले आईनी ही है, ये हराम ले आईनी ही है, यानी हर एतबार से उसका यह माल को उठाना हराम है। तो लिहाजा इसके अंदर कता साबित होगा भाई, यहां किसी किस्म का शुबा मौजूद नहीं है भाई। इस पर फिर एतराज होता है कि अगर माल की इस्मत अल्लाह की तरह मुंतकिल हो गई है फिर तो हलाक और इस्तेहलाक दोनों सूरतों में किसी एक के अंदर भी जमान नहीं आना चाहिए क्योंकि अल्लाह जमान के मोहताज नहीं है। लेकिन एक रिवायत इमाम साहब से जो हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह ने रिवायत की है उसके अंदर तो इस्तेहलाक के सूरत के अंदर जमान आता है, तो उसका भी जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि चोरी के हक में माल की इस्मत साकित हो गई थी लेकिन इस्तेहलाक जो चोर ने यानी उस माल को जाया किया है या हलाक किया है वो एक अलग फेल है, चोरी अलग फेल और इस्तेहलाक अलग फेल। तो चोरी के हक में तो माल की इस्मत साकित हो गई लेकिन इस्तेहलाक जो अलग फेल है उसके अंदर माल की इस्मत साकित करने की कोई जरूरत नहीं। चोरी के अंदर तो जरूरत थी, अगर आप माल की इस्मत साकित नहीं करेंगे तो वो तो हराम ली गैरी ही रहेगा और हराम ली गैरी ही की वजह से तो हाथ नहीं काटा जा सकता क्योंकि उसमें मुबाह होने का शुबा है। तो चोरी के अंदर जरूरत थी कि माल की इस्मत साकित की जाए फिर ही हाथ काटा जा सकता है, जबकि इस्तेहलाक एक अलग फेल है, इसके अंदर माल की इस्मत साकित करने की कोई जरूरत नहीं। और नीस चोरी के अंदर शुबा आ जाए तो फिर वहां कता साकित होता है और इस्तेहलाक तो अलग फेल है, उसके अंदर अगर शुबा आ भी जाए तो उससे कता पर कोई असर नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई। लिहाजा इस्तेहलाक की सूरत में जमान आ सकता है भाई। और फिर बतलाया था कि इमाम साहब से जो मशहूर कौल नकल किया गया है उसके मुताबिक इस्तेहलाक की सूरत में भी जमान नहीं आएगा, इस्तेहलाक की सूरत में भी जमान नहीं आएगा। वजह यह कि इस्तेहलाक भी चोरी ही का हिस्सा है क्योंकि इस आदमी ने जो चोरी की है उसका मकसद सिर्फ माल को ले जाना नहीं था बल्कि उसके जरिए अपनी जरूरतों और हाजतों को पूरा करना उसका मकसद था। तो लिहाजा यह इस्तेहलाक भी चोरी का हिस्सा है। जब यह चोरी का हिस्सा है तो जैसे चोरी के अंदर शुबे से हद साकित होती है तो इस्तेहलाक के अंदर भी शुबा अगर आ गया तो फिर हद साकित हो जाएगी। लिहाजा जैसे चोरी में इस्मत साकित हुई है इस्तेहलाक के अंदर भी इस्मत साकित हो चुकी है, लिहाजा जमान नहीं आएगा। और नीज साहिब हिदाया ने बतलाया कि हलाक की सूरत में माल की इस्मत साकित हो जाती है, इसके साथ जरूरी है कि यह भी कहा जाए कि इस्तेहलाक की सूरत में भी माल की इस्मत साकित होगी। तवज्जो है, हलाक की सूरत में माल की इस्मत साकित हो जाती है उसमें जमान नहीं आता। तो हालात की सूरत में जब माल की किस्मत साकित हो जाती है और जमान नहीं आता तो आपको कहना पड़ेगा इस्तेहलाक की सूरत में भी माल की किस्मत साकित हो गई है और जमान नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि अगर आप इस्तेहलाक के अंदर जमान को वाजिब करेंगे तो जमान और उस माल मसरूका के दरमियान मुमासलत न रही, हालांकि जमान के अंदर मुमासलत शर्त है, नस से यह बात साबित है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फमनी अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, जो तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी उस पर उसी के मिसल ज्यादती कर सकते हो। तो मालूम हुआ जमान के अंदर मुमासलत शर्त है, जमान के अंदर मुमासलत शर्त है। और अगर आप कहें कि हलाक की सूरत में जमान नहीं आएगा और इस्तेहलाक की सूरत में जमान आएगा तो फिर तो जमान में और उस माल मसरूका के दरमियान मुमासलत न रही। किस तरह मुमासलत न रही, मैंने बतलाया था। अगर आप यह कहते हैं कि हलाक की सूरत में माल की इस्मत साकित हो जाती है यानी माल मासूम नहीं है और इस्तेहलाक की सूरत में इस्मत साकित नहीं होती, मालूम हुआ वो माल मासूम है। तो मालूम हुआ ये जो माल मसरूक है बाद एतबार से देखें तो ये माल मासूम नहीं है यानी हलाक की सूरत में जमान नहीं आता, और बाद एतबार से देखें तो ये माल मासूम है यानी इस्तेहलाक की सूरत में जमान आता है। तो अगर इस्तेहलाक की सूरत में आप जमान वाजिब करेंगे तो फिर मालूम हुआ माल मसरूक वो बाज एतबार से मासूम है और बाज एतबार से मासूम नहीं है, और जो इसका जमान दिया जाएगा जो चोर जमान अदा करेगा वो तो हर एतबार से माले मासूम है। तो जमान और माले मसरूक के दरमियान तो मुमासलत ना आई, हालांकि मुमासलत जरूरी थी। तवज्जो है। तो मालूम हुआ कि माल के हलाक की सूरत में जमान नहीं आता तो इसके साथ जरूरी है कि आप यह कहें कि इस्तेहलाक की सूरत में भी जमान नहीं आएगा। अगर आप क्या कहते हैं इस्तेहलाक की सूरत में जमान आएगा, मालूम हुआ माले मसरूक बाज सूरतों में मासूम है और बाज सूरतों में मासूम नहीं, और जो जमान अदा किया जाएगा वो तो हर एतबार से मासूम है। तो जमान तो उस माले मसरूक के मिसल न हुआ, हालांकि जमान में मुमासलत शर्त है, ये नस से साबित है। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि अगर एक शख्स ने कई चोरियां की हैं और किसी एक चोरी में उसका हाथ काट दिया गया तो यह सबकी जजा हो गई और किसी भी चोरी का अब जमान इस पर नहीं आएगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि अगर सब ने खुसूमत की है फिर तो यह कता सबके लिए हो गई, किसी चोरी का भी जमान चोर पर नहीं आएगा। लेकिन अगर खुसूमत सिर्फ एक आदमी ने की है तो बाकियों के हक में तो कता नहीं हुई, जब कता नहीं तो उनका माल अभी भी मासूम है तो उसका जमान चोर को देना पड़ेगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि इसने जितनी चोरियां की थी उनमें अल्लाह के हक के तौर पर एक ही कता वाजिब होती है, जितनी भी चोरियां की हैं इनमें एक ही कता वाजिब होती है बतौर अल्लाह के हक के, इसलिए क्योंकि हुदूद की बुनियाद तदाखुल पर है, हुदूद के अंदर तदाखुल किया जाता है। और बाकी साहिबैन फरमाते हैं कि यहां बाकियों ने खुसूमत नहीं की, तो हम कहते हैं कि खुसूमत तो सिर्फ इस चोरी के इजहार के लिए जरूरी थी ताकि काजी के पास चोरी जाहिर हो जाए, बाकी हाथ का काटना तो नफ से चोरी की वजह से ही वाजिब हो चुका था। तो जब एक दफा हाथ काट दिया गया तो गोया जितना वाजिब था वो सारा वसूल कर लिया गया भाई। और नीस इस बात से भी इसकी ताइद होती है कि इस हाथ काटने का नफा गुज़श्ता तमाम चोरियों को पहुंचेगा और चोर आइंदा चोरी से बाज आ जाएगा। और इसी तरह इख्तिलाफ है अगर ये चोर एक ही आदमी से कई मरतबा निसाब चोरी कर ले तो इमाम साहब फरमाते हैं एक दफा एक कता काफी है और ये कता जो है तमाम साबका चोरियों की जजा हो गई, लिहाजा बाकी निसाबों का जमान चोर पर नहीं आएगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, बाकी निसाबों का जमान चोर पर आएगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। बाबू मा युहदिसु सारिकु फिस सारिका। भाई अहदासा युहदिसु इहदास का माना है किसी चीज को वजूद देना। बाब मा युहदिसु सारिकु, ये बाब है उस चीज के बयान में जिसको चोर वजूद दे। फिर सारिकती माले मसरूका के अंदर, माले मसरूका के अंदर चोर जिस चीज को वजूद दे यानी कोई तब्दीली पैदा कर दे तो उसका बयान फरमाएंगे साहिबे हिदाया इस बाब में। याद रखो जब चोर कोई माल चोरी कर लेता है तो बाज औकात वो इसके अंदर तब्दीली पैदा कर देता है, तो वो तब्दीली तीन किस्म की हो सकती है, या तो उस तब्दीली की वजह से उस चीज की कीमत कम हो जाएगी, या उस तब्दीली की वजह से उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी, या वो ऐसी तब्दीली होगी कि जिसमें मसलन फुकाहा का इख्तिलाफ होगा, बास के नजदीक उस तब्दीली की वजह से उस चीज की कीमत बढ़ गई है और बास के नजदीक उस तब्दीली की वजह से उस चीज की कीमत कम हो गई है। तो साहिब हिदाया यहां तीनों किस्म की सूरतें जिक्र फरमाएंगे, ऐसी तब्दीली जिससे माले मसरूका की कीमत कम हो जाए, या ऐसी तब्दीली जिससे माले मसरूका की कीमत बढ़ जाए, या ऐसी तब्दीली के जिसमें हमारे अइमा आपस में इख्तिलाफ करते हैं, उन सब को यहां बयान फरमाएंगे। देखिए भाई कहते हैं बाबू मा युहदिसु सारिकु फिस सरिकति, ये बाब है उस चीज के बयान में जिसको चोर वजूद दे फिस सरिकति माले मसरूका के अंदर, यानी वो तब्दीली या वो कारीगरी जिसको चोर वजूद दे दे माले मसरूका में। तो कहते हैं वमन सरका सौबन फशक्कहु फिद्दारी बिनिसफैनी, भाई पहली सूरत वो है कि जिसके अंदर चोर घर के अंदर दाखिल हुआ और वहीं पर उसने उस माले मसरूका के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा की जिससे उसकी कीमत कम हो गई। मसलन वो कपड़ा चोरी कर रहा था, उसने उस घर के अंदर ही कपड़े को फाड़कर उसके दो हिस्से बना लिए, और आप जानते हैं कि कपड़े को फाड़ना ये उसकी कीमत कम कर देता है, लेकिन कपड़ा फाड़ने के बावजूद वो कपड़ा अभी भी निसाब के बकदर कीमत का है, यानी उसकी कीमत 10 दिरहम या इससे ज्यादा है। फिर इस कपड़े को लेकर चोर उस घर से निकला, तो याद रखो इस सूरत में चोर का हाथ काटा जाएगा, क्योंकि अगरचे उसने कपड़े को फाड़ा है, उसमें तब्दीली पैदा की है, लेकिन जिस वक्त चोरी मुकम्मल हुई यानी वो घर से वो कपड़ा लेकर निकला, उस वक्त भी उस माल की कीमत निसाब के बकदर थी, लिहाजा चोर का हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं वमन सारका सौबन, और जिस शख्स ने कोई कपड़ा चोरी किया फशक्कहु फिद्दारी, तो उसने उस कपड़े को उस घर के अंदर ही फाड़ लिया बिनिसफैनी दो निसफ के अंदर, यानी उसके दो हिस्से बना लिए। सुम्मा अखरजहु, फिर उसने उस कपड़े को उस घर से निकाला वह हुआ युसावी अशरता दराहिमा, इस हाल में कि उस कपड़े की कीमत जो है वो 10 दिरहम के बराबर है। कुतिया, तो इस सूरत में चोर का हाथ काटा जाएगा। भाई तो देखो यहां चोर ने ऐसी तब्दीली पैदा की है उस चीज में जिससे उसकी कीमत कम हो गई है, तो कहते हैं इस सूरत में उसका हाथ काटा जाएगा। वअन अबी यूसुफ रहिमहुल्लाहु तआला अन्नहु ला युक्तअ, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है कि इस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, अगरचे इस माल की कीमत अभी भी 10 दिरहम से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसका हाथ नहीं काटा जाएगा। कहते हैं ली अन्ना लहू फी ही सबब अल मिल्की, इसलिए क्योंकि इस चोर के लिए इस कपड़े के अंदर मिल्कियत का सबब है, इस चोर के लिए इस कपड़े में मिल्कियत का सबब पैदा हो चुका है, और वो ये कि इसने कपड़ा फाड़ दिया था, इसने कपड़ा फाड़ दिया था। याद रखो गसब के एक दो मसाइल पहले याद रखें, फिर आपको यह बात पूरी तरह समझ में आएगी। आप जानते हैं गसब इसे कहते हैं कि कोई शख्स दूसरे की चीज जबरदस्ती छीनकर ले जाए, इसको गसब कहते हैं। और आप जानते हैं कि गासिब पर जमान आता है, अगर वो चीज उसके पास उसी तरह मौजूद है तो वो चीज वापस करना पड़ेगी, और अगर वो चीज उसके पास हलाक हो गई तो उसको जमान देना पड़ेगा। और फिर इसमें यह भी याद रखना, अगर गासिब के फेल की वजह से उस चीज की कीमत में कमी हो गई तो फिर इस सूरत में वो चीज भी उसको वापस करना पड़ेगी और जमान भी देना पड़ेगा। मसलन गासिब के फेल की वजह से उस चीज की कीमत में 5 दिरहम की कमी हो गई तो उस गासिब को वो चीज भी वापस लौटाना पड़ेगी और 5 दिरहम बतौर जमान के भी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर गासिब ने उस चीज के अंदर ज्यादा तब्दीली पैदा कर दी जिससे उसकी कीमत बहुत ज्यादा कम हो गई, मसलन पहले उसकी कीमत 20 दिरहम थी और अब कम होकर 10 दिरहम रह गई, तो फिर इस सूरत में मालिक को इख्तियार है। पहली सूरत क्या थी कि इस गासिब के अमल से थोड़ा सा नुकसान आया था, वहां मालिक को इख्तियार नहीं है, मालिक को वही चीज लेना पड़ेगी और साथ जमान भी वसूल कर लेगा। लेकिन अगर गासिब ने उस चीज में ज्यादा तब्दीली पैदा कर दी है, यानी यूं कहें उसमें ज्यादा नुकसान कर दिया है, तो फिर अब मालिक पर लाजिम नहीं है कि वही चीज ले, बल्कि मालिक को शरीयत ने इख्तियार दे दिया, वो चाहे तो वही चीज भी ले ले और साथ जो नुकसान आया है उसका जमान भी ले ले। मसलन 10 दिरहम की चीज रह गई है और 10 दिरहम उसमें उसकी कीमत कम हो गई है, तो वो चीज भी ले ले और 10 दिरहम बतौर जमान के भी ले ले। और अगर मालिक चाहे तो वो चीज गासिब ही के पास रहने दे और उसको कहे ये तुम ही रखो, मुझे अब मेरे माल की पूरी कीमत दे दो और उससे 20 दिरहम वसूल कर ले। तो हासिल कलाम क्या कि गासिब जब कोई चीज गसब करे तो अगर उसमें गासिब के अमल से थोड़ा नुकसान आया है तो फिर मालिक को वही चीज भी लेना पड़ेगी और वो उसका जमान भी साथ ले सकता है। लेकिन अगर गासिब के अमल की वजह से उस चीज में ज्यादा नुकसान आ गया है, फिर मालिक पर अब लाजिम नहीं है कि वही चीज ले, बल्कि मालिक को शरीयत ने इख्तियार दे दिया, वो चाहे तो वो चीज इसी तरह ले ले और साथ नुकसान का जमान भी वसूल कर ले, और मालिक चाहे तो वो चीज गासिब ही के पास रहने दे और अपनी चीज की पूरी कीमत उससे वसूल कर ले। तो यहां पर बात चल रही है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की। सूरत क्या है, एक चोर घर के अंदर दाखिल हुआ, वहां उसने कपड़ा उठाया और कपड़े को फाड़कर उसके दो टुकड़े कर दिए और फिर वो कपड़ा लेकर घर से निकला। तो तरफैन फरमाते हैं कि अगर इस कपड़े की कीमत 10 दिरहम के बराबर है तो इस चोर का हाथ काटा जाएगा, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, इस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि इस चोर ने इस चीज में ऐसी तब्दीली पैदा कर दी है जो इस चोर की मिल्कियत का सबब है जी। इसने कपड़े को फाड़ दिया है, कपड़े के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पैदा कर दिया, और जब बहुत ज्यादा नुकसान पैदा कर दिया जाए किसी चीज के अंदर, तो मालिक को इख्तियार होता है कि चाहे वो चीज उसी तरह वसूल कर ले और साथ नुकसान का जमान भी वसूल कर ले, और चाहे तो दूसरे आदमी को उस चीज का मालिक बना दे और उस चीज की पूरी कीमत उससे वसूल कर ले। तवज्जो है, तो यहां भी चोर ने जब इस कपड़े को इतना ज्यादा फाड़ दिया है कि जिससे उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान आ गया, तो यहां अब चोर के लिए सबबे मिल्कियत पैदा हो गया। चोर अभी मालिक तो नहीं बना, मालिक को तो इख्तियार है, वो चाहे तो इसी तरह कपड़ा ले ले और इसका नुकसान वसूल कर ले, लेकिन मालिक को यह भी तो इख्तियार है कि इस कपड़े का मालिक चोर ही को बना दे और पूरी कीमत उससे वसूल कर ले। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर चोर ने उस कपड़े के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पैदा कर दिया है, तो उसमें सबबे मिल्क पैदा हो गया चोर के लिए। चोर अभी मालिक तो नहीं बना, वो तो कपड़े के मालिक का इख्तियार है, लेकिन सबबे मिल्क पैदा हो चुका है। और जब माले मसरूका के अंदर चोर के लिए सबबे मिल्कियत पैदा हो जाए, तो फिर उसमें उसका हाथ नहीं काटा जा सकता। जब भी कोई चोर किसी माल को चुराए और उस माल के अंदर उस चोर के लिए सबबे मिल्कियत हो, तो चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। यहां पर भी इस चोर ने चोरी से पहले कपड़ा फाड़ा है और फिर वो दो हिस्से लेकर घर से निकला है, तो लिहाजा चोरी से पहले ही सबबे मिल्क पाया गया चोर के लिए, लिहाजा इस चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। वो फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे दो आदमियों के दरमियान बैअ हुई, और आप जानते हैं बैअ के अंदर कभी कभार मुश्तरी या बाएअ जो है वो खियारे शर्त रख लेते हैं। मसलन बाय कहता है कि मुझे 3 दिन तक इख्तियार है, मैं साथियों से मशवरा करूंगा, मुझे 3 दिन तक इस बैय को फसख करने का इख्तियार है। तो यह इख्तियार बाय भी रख सकता है और मुश्तरी भी। और आपको मैंने बतलाया था कि अगर मुश्तरी खियारे शर्त रखे तो फिर मुश्तरी मबीए का मालिक भी बन जाता है जी। क्योंकि बैय को फसख करने का इख्तियार किसका है, मुश्तरी का है, तो मुश्तरी मालिक बन चुका है, लेकिन वो बैअ को फसख कर सकता है उस मुद्दत के अंदर। और अगर खियारे शर्त बाय रखे तो फिर इस सूरत के अंदर मुश्तरी उस मबीए का मालिक नहीं बनता जी। मुश्तरी उस मबीए का मालिक नहीं बनता। हां, उस मबीए में मुश्तरी के लिए सबबे मिल्क पैदा हो गया है, वो मालिक बन सकता है अगर बाय ने उस बैअ को फसख न किया जी। तवज्जो है। लिहाजा दो आदमियों के दरमियान बैअ हुई और बाय ने खियारे शर्त अपने लिए रखा। जब बाय ने खियारे शर्त अपने लिए रखा है तो मुश्तरी अभी भी उस मबीए का मालिक नहीं, लेकिन मुश्तरी के लिए उसमें सबबे मिल्क पैदा हो चुका है और फिर उसी मुद्दत के दौरान मुश्तरी ने वो मबीआ चोरी कर लिया बाय से। तो इस सूरत में बिल इत्तेफाक हमारे अइमा के नजदीक इस मुश्तरी का ये मुश्तरी ये जो चोर है इसका हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि उस माले मसरूक के अंदर इसके लिए सबबे मिल्क पैदा हो चुका है
जी।
इसके लिए सबबे मिल्क पैदा हो चुका है, इसके मालिक बनने का एहतेमाल आ चुका है भाई। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिस तरह इस मुश्तरी का हाथ नहीं काटा जाता क्योंकि इस मबीए के अंदर उसके लिए सबबे मिल्क पैदा हो चुका है, इसी तरह यह चोर जो घर के अंदर दाखिल हुआ और इसने कपड़े को फाड़ दिया तो इसने कपड़े में बहुत ज्यादा नुकसान पैदा कर दिया, तो यहां पर भी इस चोर के लिए सबबे मिल्क पैदा हो गया। और माले मसरूक के अंदर जब चोर के लिए सबबे मिल्क पैदा हो जाए तो उसका हाथ नहीं काटा जा सकता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह ताला, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु ला युक्ताउ, कि इस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, लि अन्न लहू फीही सबबल मिल्क, इसलिए क्योंकि इस चोर के लिए इस कपड़े के अंदर सबब मिल्क है। वह हुवल खर्कुल फाहिशु, और भाई वह सबब मिल्क क्या है? कहते हैं वह हुवल खर्कुल फाहिशु, खर्क कहते हैं फटन को, कपड़े वगैरह को फाड़ना, फाहिश का माना है कसीर। तो कहते हैं इस चोर के लिए इस कपड़े में सबबे मिल्क मौजूद है, वह हुवल खर्कुल फाहिशु, और वो कसीर फटन है कि इसने कपड़े को बहुत ज्यादा फाड़ दिया है। फइन्नहु यूजिबुल कीमता, इसलिए क्योंकि ये खर्के फाहिश जो है यूजिबुल कीमता, ये उस चीज की कीमत उस आदमी पर वाजिब कर देती है। वह तमल्लुकल मजमूनी, और नीज ये जो खर्के फाहिश है ये साबित कर देती है तमल्लुकल मजमूनी, के वो उस मजमून का मालिक बन जाता है। वो शय मजमून, मजमून कहते हैं वो चीज जिसका जमान दिया गया, जिसका जमान दिया गया। भाई चोर ने जब कपड़े को बहुत ज्यादा फाड़ दिया तो चोर पर जमान आ गया, और जब चोर जमान अदा करेगा तो इस कपड़े का मालिक बन जाएगा। तो ये जो माले मसरूक है इसका चोर जमान देगा, तो ये माले मसरूक हुआ मजमून। भाई मजमून इसमें मफूल का सीगा है, क्या माना? जिसका जमान दिया गया, तो ये माले मसरूक क्या है? ये माले मजमून है। तवज्जो है। कहते हैं फइन्नहु यूजिबुल कीमता, इसलिए क्योंकि ये कसीर फटन जो है ये कीमत को वाजिब करती है। वह तमल्लुकल मजमूनी, और उस मजमून शय के मालिक होने को वाजिब करती है, ये उसका मालिक बन जाता है जब कीमत अदा कर देता है। वह सारकल मुश्तरी, और ये चोर मुश्तरी की तरह हो गया। इदा सारका मबीअन, जब वो मुश्तरी चोरी कर ले ऐसे मबीए को, फी ही खियार उन लिल बाई, कि जिसके अंदर बाए का खियार था। ये चोर उस मुश्तरी की तरह हो गया जिसने उस मबीए को चोरी कर लिया जिसमें बाए का खियार था। भाई बात समझ में आ गई। तो दोनों में इल्लत जामिया क्या है? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ये जो चोर जिसने कपड़ा फाड़ा है इसको कियास कर रहे हैं उस मुश्तरी पर जिसने उस मबीए को चुरा लिया है जिसके अंदर बाए ने खियार रखा था। तो इल्लत जामिया ये है कि यहां पर दोनों जगह चोर ने एक ऐसी चीज चुराई है जो उसकी ममलूक नहीं है, लेकिन उस चीज के अंदर उसका सबबे मिल्क पैदा हो चुका है। तो जैसे उस मुश्तरी का हाथ नहीं काटा जाता, इस चोर का हाथ भी नहीं काटा जाएगा। यह माना है वसारकल मुश्तरी, और यह कपड़ा चुराने वाला मुश्तरी की तरह हो गया। इजा सारका मबीअन, जब मुश्तरी ऐसे मबीए को चोरी कर ले, फी ही खियार उन लिल बाई, जिसमें बाए के लिए खियार हो। वलहुमा, अब तरफेन की दलील आ गई। वलहुमा, तरफेन की दलील यह है कि अन्नल अख्ज वुज़िअ सबबन लिज़्ज़मानी ला लिल्मिल्की। तरफेन फरमाते हैं कि हमें आपकी बात कबूल नहीं है, आपने कहा कि खरके फाहिश जो है वो सबबे मिल्कियत है। हम कहते हैं नहीं, खरके फाहिश सबबे जमान है, सबबे मिल्क नहीं। खरके फाहिश सबब जमान है, सबब मिल्क नहीं है। तो कहते हैं वलहुमा तरफैन, फरमाते हैं कि अनल अखजा, यहां अल अखज पर अलिफ लाम अहदे खारजी है भाई, हर अखज मुराद नहीं, खास अखज, खास तरीके से उठाना मुराद है, और ये वो वाला उठाना है जो पीछे जिक्र हुआ, ये जो उसने खरके कसीर वाला कपड़ा उठाया है चोर ने, बात समझ में आ रही है, इससे मुराद ये वाला अखज है भाई जिसमें चोर ने कपड़े को फाड़ दिया है बहुत ज्यादा, तो ये अखज मुराद है। तो वलहुमा तरफेन की दलील जो है वो ये है कि अन्नल अखजा, कि ये वाला जो अखज है, ये वाला अखज जिसमें चोर खरके कसीर पैदा कर देता है, ये वाला अखज जो है वो जिहा, इसको वजा किया गया है सबबन ले जमानी, जमान के लिए बतौर सबब के
जी।
इस तरह की कसीर फटन वो जमान का सबब है, मिल्कियत का सबब नहीं। फिर तर्जमा देख लीजिए, वलहुमा और तरफैन की दलील यह है कि अन्नल अखजा, कि ये वाला जो अखज है यानी इस तरह कसीर फटन वाला कपड़ा उठाना, वो ज़िया सबबन लि जमानी, इसको वजह किया गया है जमान के लिए बतौर सबब के, ला लिल मिल्की, मिल्कियत के लिए इसको वजह नहीं किया गया, मिल्कियत के सबब के तौर पर इसको वजा नहीं किया गया। वह इन नमल मिल्क यसबुतु जरूरत अदा इस जमानी, हां इस जमान की वजह से मिल्कियत साबित हो जाएगी जब यह जमान अदा करेगा। यह जो चोर का माल को उठाना है खरके कसीर के साथ, यह उठाना जमान का सबब है, मिल्कियत का सबब नहीं। हां जब यह जमान अदा करेगा तो फिर यह मालिक भी बन जाएगा। तो इस तरह का उठाना जमान का सबब है, और यह जमान आगे मिल्कियत तक पहुंचा सकता है, लेकिन बहरहाल खुद यह मिल्कियत का सबब नहीं है भाई। यह माना है वह इन नमल मिल्क यसबुतु जरूरत अदा इस जमानी, और मिल्कियत जो है वह तो साबित होती है जमान की अदायगी की जरूरत की वजह से, मिल्कियत साबित होती है जमान की अदायगी की जरूरत की वजह से, जमान की अदायगी के साथ जरूरी है कि इस चोर की मिल्कियत साबित हो जाए, जमान की अदायगी के साथ जरूरी है। वजह यह कि यह जमान किस चीज का है, उस माले मसरूका का है, और चोर मसलन उसका जमान देता है, तो जब चोर जमान देगा तो कहना पड़ेगा चोर उस माले मसरूका का मालिक बन गया। अगर आप कहते हैं नहीं चोर अभी भी माले मसरूका का मालिक नहीं बना, वही पुराना मालिक जो है उस माले मसरूका का भी मालिक है, और जमान भी उसको दे दिया गया, वो जमान का भी मालिक बन गया, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आदमी बदल और मुबदल दोनों का मालिक बन जाए, बदल और मुबदल एक ही आदमी की मिल्क में जमा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा जब चोर जमान अदा करेगा तो वो मसरूक मिनहु उस जमान का मालिक बन जाएगा, तो इसके साथ जरूरी है कि कहना पड़ेगा कि चोर जो है वो उस माले मसरूक का मालिक बन गया। मालूम हुआ जमान अदा करने के साथ जरूरी है कि माले मसरूक के अंदर चोर की मिल्कियत साबित हो जाए, बात समझ में आ रही है। यह माना है कहते हैं वह इन नमल मिल को यसबुतु जरूरत अदा इस जमानी, और चोर की जो मिल्कियत साबित होती है वो जमान की अदायगी के साथ जरूरी होने की वजह से है। कैला यजतमी अल बदलानी फी मिल्क वाहिदिन, ताकि कहीं दोनों बदल एक ही शख्स की मिल्कियत में जमा ना हो जाएं, माले मसरूक भी उस मसरूक मिनहू का और जमान भी उसी का, फिर तो ये दोनों बदलैन का एक ही आदमी मालिक बन गया, हालांकि दोनों बदलैन एक आदमी की मिल्क में जमा नहीं हो सकते। लिहाजा जब मसरूक मिनहू जमान का मालिक बन रहा है तो कहना पड़ेगा कि चोर माले मसरूका का मालिक बन रहा है। तो ये माना है कैला यजतमी अल बदलानी फी मिल्क वाहिदिन, ताकि कहीं दो बदल जमा ना हो जाए एक ही मिल्कियत में। वह मिसलुहू ला यूरिसु शुबहता, और इस किस्म का उठाना यह शुबा पैदा नहीं करता। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तो फरमाते थे कि इस तरह का उठाना यानी खरके कसीर वाला, खरके कसीर के साथ उठाना यह मिल्कियत का सबब है, और इसकी वजह से शुबा आ जाएगा, और शुबा आ जाए तो हद क्या हो जाती है, साकित, लिहाजा चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। हम कहते हैं नहीं, यह इस तरह का खरके कसीर के साथ उठाना यह मिल्कियत का सबब नहीं है, यह जमान का सबब है। जब यह जमान का सबब है तो यह किसी किस्म का शुबा पैदा नहीं करता, क्योंकि यहां मिल्कियत है ही नहीं भाई। तो कहते हैं वमिसलुहु ला यूरिसु शुबहता, और इस किस्म का अखज जो है यानी खरके कसीर वाला अखज जो है वो शुबहा पैदा नहीं करता। का नफसिल अखजी, जैसे कि नफ्स से अखज है भाई, एक है वैसे उठाना और एक है खरके कसीर के साथ उठाना। एक चोर आया और कपड़ा उठाकर ले गया, उसने खरके कसीर नहीं किया, उसने कपड़े को फाड़ा नहीं, वैसे कपड़ा उठाकर ले गया, तो हो सकता है बाद में वो मालिक जो है चोर को वो माल हिबा कर दे। तो नफ्स अख्ज के अंदर भी तो मालिक बनने का इहतमाल मौजूद है, जैसे इस फर्क कसीर की वजह से मालिक होने का सिर्फ एहतमाल है, मालिक नहीं बना, क्योंकि फर्क कसीर के साथ उठाना ये जमान का सबब है, ये मिल्कियत का सबब है ही नहीं। तो इसी तरह नफ्स अख्ज अगर वैसे कोई चीज उठाकर ले जाए चोर, तो मालिक बनने का एहतमाल तो वहां भी मौजूद होता है, लेकिन वहां बिल इतफाक चोर का हाथ काटा जाता है। तो यहां पर भी जब मिल्कियत का सबब नहीं है, सिर्फ मिल्कियत का एक एहतमाल आया है, तो उसकी वजह से कोई शुबा नहीं आएगा, चोर का हाथ काटा जाएगा। ये माना है, कहते हैं वमिसलुहु ला यूरिसु शुबहता, और इस तरह का खरके कसीर के साथ उठाना यह शुबा पैदा नहीं करता। का नफसिल अख्जी, जैसे कि नफ्स अख्ज है यानी बगैर फटन के साथ उठाना वो शुबा पैदा नहीं करता। वह कमा इदा सरकल बाएउ मईबन बाअहू, भाई इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने इस खरके कसीर के साथ कपड़े को चुराने वाले चोर को कियास किया था उस मुश्तरी पर जो बाय से वो मबीहा चोरी कर लेता है जिसमें बाय को खियारे शर्त हासिल है। तवज्जो है, हम कहते हैं नहीं, आप इस चोर को उस मुश्तरी पर कियास न करें, बल्कि इस चोर को आप बाए पर कियास करें। और सूरत यह है कि एक बाय ने दूसरे आदमी को ऐब वाली चीज बेच दी, और आप जानते हैं कि मुश्तरी जो है ऐब की वजह से मबीहा वापस कर सकता है, और जब मुश्तरी ऐब की वजह से मबीहा वापस करेगा तो बाय दोबारा उसका मालिक बन जाएगा। पहले बै हो गई थी, मालिक कौन बन गया था? मुश्तरी। फिर मुश्तरी को ऐब का पता चला कि ये तो बाय ने मुझे ऐब वाली चीज दी है, मुश्तरी वापस ले गया, मुश्तरी ने वो चीज बाय को दे दी और अपने समन उसे वापस वसूल कर लिए, तो उस मबिया का मालिक दोबारा बाए बन गया। तो हम कहते हैं कि जैसे एक बाय है उसने एक मुश्तरी को ऐब वाली चीज फरोख्त कर दी, और फिर बाद में मुश्तरी ने अभी वापस नहीं की थी कि बाय ने वही चीज मुश्तरी से चोरी कर ली, बाय ने मुश्तरी से वो चीज चोरी कर ली। अब देखो, हालांकि वहां पर उस चीज में ऐब मौजूद है, तो बाय ने ऐसी चीज चोरी की है जिसमें ऐब गया था इसकी तरफ से, और वहां सबबे रद्द मौजूद है, सबबे रद्द, तो ऐब की वजह से चीज वापस की जाती है। खुद ऐब मिल्कियत का सबब नहीं है, ऐब की वजह से बाय उस चीज का मालिक बन जाए ऐसा नहीं है, बल्कि जब मुश्तरी वापस करेगा फिर बाय उसका मालिक बनेगा। तो ऐब सबब रद्द तो है, वापस लौटाने का सबब तो है, मिल्कियत का सबब नहीं। हां, वो अलग बात है, जब मुश्तरी वापस करेगा तो बाय मालिक बन जाएगा। मालूम हुआ ऐब वापस करने का सबब है, और वापस करना यह मिल्कियत तक पहुंचा देता है। तो बहरहाल ऐब जो है वह सबब रद्द है, मिल्कियत का सबब नहीं, अलबत्ता यह रद्द मिल्कियत तक पहुंचा देता है। इसी तरह इस चोर ने खरके कसीर वाला कपड़ा चोरी किया है, तो यह सबब जमान है, सबब मिल्कियत नहीं। हां, अलबत्ता यह जमान जो है यह मिल्कियत तक पहुंचा सकता है, जैसे वहां पर ऐब वाली चीज फरोख्त करना और फिर उस बाय का उसको वापस चुरा लेना, तो वो ऐब जो है वो सबब रद्द तो है लेकिन सबब मिल्क नहीं। हां, वो अलग बात है कि वो रद्द जो है मिल्कियत तक पहुंचा देगा। बात जरा गहरी है, मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं, फिर तवज्जो से सुनो, फिर तवज्जो से सुनो। ये जो चोर ने खरके कसीर वाला कपड़ा चोरी किया, तरफेन फरमाते हैं ये खरके कसीर वाला कपड़ा उठाना और चोरी करना ये जमान का सबब है, मिल्कियत का सबब नहीं। फिर दोहराएं, किस चीज का सबब है? जमान का सबब है, और ये जमान मिल्कियत तक पहुंचा सकता है, अगर जमान मालिक ले लेगा तो। ये चोर उस माल का मालिक बन जाएगा। इसी तरह बाय ने मुश्तरी से वो ऐब वाली चीज चोरी कर ली, बाय ने उस मुश्तरी से ऐब वाली चीज चोरी कर ली, तो ऐब सबबे मिल्क नहीं है, ऐब सबबे मिल्कियत नहीं है, ऐब सबबे रद है। ऐब सबबे हां वो रद फिर आगे मिल्कियत तक पहुंचा सकता है, जैसे पिछले मसले में जमान मिल्कियत तक पहुंचा सकता था और इसी तरह यहां पर ये रद मिल्कियत तक पहुंचा देगा, क्योंकि जब बाय को वो चीज वापस करेगा और अपने पैसे ले लेगा तो बाय दोबारा मालिक बन जाएगा। तो हासिल कलाम ये कि अख्ज़ मज़कूरा सबब ज़मान है, अख्ज़ मज़कूरा सबब ज़मान यानी खर्के कसीर के साथ जो अख्ज़ है, जो उसने माल लिया है, ये सबब ज़मान है और ये मिल्कियत तक पहुंचा सकता है। इसी तरह वो ऐब जो है, ऐब सबब रद है जो मिल्कियत तक पहुंचा सकता है। तो याद रखो, तरफेन फरमाते हैं जैसे इस चोर का हाथ काटा जाएगा इसी तरह इस बाय का भी हाथ काटा जाएगा, अगरचे दोनों के अंदर एक ऐसी चीज पाई जा रही है जो मिल्कियत तक पहुंचा सकती है, लेकिन बहरहाल खुद सबब मिल्कियत तो मौजूद नहीं है, खुद सबब मिल्कियत मौजूद नहीं। बात समझ में आ गई। फिर दोहरा लें, हासिल कलाम क्या कि ये गर्क कसीर वाला अखज जो है ये सबब जमान है और ये जमान मिल्कियत तक पहुंचा सकता है अगर वो मालिक ले लेगा। इसी तरह ऐबदार मबिया बेचा है तो ये ऐब सबब रद है, इसकी वजह से मबिया वापस हो सकता है और ये रद मिल्कियत तक पहुंचा सकता है, लेकिन खुद ये ऐब सबब मिल्कियत नहीं, और खुद उस तरह का कसीर फटन वाला कपड़ा उठाना वो खुद मिल्कियत का सबब नहीं है। तो दोनों सूरतों के अंदर चोर का हाथ काटा जाएगा, उस कसीर फटन वाले कपड़े के चोर का हाथ भी काटा जाएगा और ये बाय जो ऐब वाली चीज वापस चोरी कर लेता है इसका भी हाथ काटा जाएगा। भाई बात समझ में आ गई। यह माना है व कमा इदा सरकल बाई बन बाहू, और जैसे कि चोरी कर ले अल बाउ चीज को बेचने वाला, मई बन वो ऐब वाला मबीआ बाहू जो उसने बेचा था। फिर तर्जमा देख लीजिए, वकमा इदा सारा कल बाउ मई बन बाहू, और जैसे कि बाय जो है उस ऐबदार मबीए को चोरी कर ले बाहू जो उसने बेचा था। बेखिलाफी मा जकारा, बखिलाफ उसके जिसको इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला ने जिक्र किया। इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला ने इस कपड़े वाले मसले को किस पर कियास किया था? उस मुश्तरी पर जो उस मबीए को चोरी कर लेता है जिसमें बाय ने अपने लिए खियारे शर्त रखा है। हम कहते हैं नहीं, आप इस चोर को उस मुश्तरी पर कयास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उस मुश्तरी ने तो बैअ की है बाय के साथ और बैअ सबबे मिल्क है, ये कसीर फटन भी सबबे मिल्क नहीं, ऐब भी सबबे मिल्क नहीं, लेकिन मुश्तरी ने तो बैअ की थी बाकायदा बाय के साथ। अगरचे मबीहा अभी मुश्तरी की मिल्क में दाखिल नहीं हुआ क्योंकि खियारे शर्त किसने रखा है? बाय ने। तो चीज बेशक मुश्तरी की मिल्क में दाखिल नहीं हुई लेकिन मुश्तरी की मिल्कियत का सबब तो वहां आ चुका है, वो बैअ तो कर चुका है, तो अगर बाय ने ये बैअ को फसख ना किया तो मुश्तरी उसका मालिक बन भी जाएगा। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बेखिलाफ ही माजा करा, बखिलाफ उसके जिसको इमाम अबू यूसुफ रहमला ने जिक्र किया। लि अन्नल बैअ मौजूउन लि इफादतिल मिल्की, इसलिए क्योंकि बैअ जो है उसको तो मुकर्रर किया गया है मिल्कियत का फायदा देने के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई अच्छी तरह? ये मुश्किल मसला था भाई। आगे देखिए, कहते हैं वहाद अल खिलाफ फीमा इदख्तारा तजमीन नुकसानी व अखजा सौबी। मैंने आपको बतलाया था कि गासिब अगर किसी चीज के अंदर कसीर नुकसान कर दे तो मालिक को इख्तियार होता है, या तो वो उसी चीज को ले ले और साथ नुकसान का जमान भी ले ले, या वो चीज ना ले बल्कि उसकी पूरी कीमत ले ले। तो आपको साहिब हिदाया अब बतलाएंगे कि ये जो तराफेन का इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से इख्तिलाफ है। तराफेन फरमाते हैं इस चोर का हाथ काटा जाएगा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं इसका हाथ नहीं काटा जाएगा। कहते हैं यह उस सूरत में इख्तिलाफ है जब मालिक इस कपड़े को वापस ले ले और साथ नुकसान का जमान भी ले ले। और अगर मालिक ने कहा नहीं अब मुझे यह कपड़ा नहीं चाहिए, यह कपड़ा तुम ही रखो, मुझे इसकी कीमत दे दो, यानी उसका पूरा जमान ले लेता है, तो फिर इस सूरत में बिल इत्तेफाक इस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। तो इस सूरत में उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वहाद अल खिलाफ, और यह जो इख्तिलाफ है तरफेन और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के दरमियान, फी मा, ये उस सूरत में है, इदख्तारा तजमीनन नुकसानी, जब मालिक ने इख्तियार किया तजमीनन नुकसानी, उस नुकसान का जामिन बनाने को, कि उसने चोर को उस नुकसान का जामिन बनाया, वह अखजा सौबी, और कपड़ा लेने को, मालिक ने किस चीज को इख्तियार किया, नुकसान का जामिन बनाने को और कपड़ा लेने को इख्तियार कर लिया। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वहाद अल खिलाफ फी मा इदख्तारा तजमीनन नुकसानी व अखजा सौबी, और ये इख्तिलाफ जो है उस सूरत में है जब मालिक ने उस चोर को नुकसान का जामिन बनाने और कपड़ा लेने को इख्तियार किया। फइन इख्तारा तजमीन अल कीमती, और अगर मालिक ने उस कपड़े की कीमत का जामिन बनाने को इख्तियार किया, व तर्क सौबी अलैही, और कपड़ा चोर ही के पास छोड़ने को इख्तियार किया, तो ला युक्ता बिल इत्तिफाकी, तो इस सूरत में बिल इत्तिफाक इस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। लिअन्नहू मलकहू, क्योंकि जमान की वजह से चोर इस कपड़े का मालिक बन जाएगा। मुस्तनिदन इला वक्तिल अख्जी, इस हाल में कि यह मिल्कियत इसकी निस्बत होगी उस कपड़े को उठाने के वक्त की तरफ, कि उस वक्त से ही मालिक है जब इसने कपड़े को उठाया था। भाई तो मालूम है इसने अपने ममलूका कपड़े को उठाया है, तो इस सूरत में शुबा आ गया और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है। तो कहते हैं लिअन्नहु मलकहु मुस्तनिदन इला वक्तिल अख्जी, इसलिए क्योंकि चोर जो है वो इस कपड़े का मालिक बन जाएगा इस हाल में कि उस मिल्कियत की निस्बत होगी कपड़ा उठाने के वक्त की तरफ। फसारा कमा इदा मलकहु बिल हिबती, तो ये इसी तरह हो गया कि जैसे चोर उस कपड़े का मालिक बन जाए बिल हिबती, हिबा की वजह से। भाई अगर चोर कपड़ा चोरी करके ले गया और बाद में मालिक ने उसको कपड़ा हिबा कर दिया तो चोर का हाथ नहीं काटा जाता। तवज्जो है, तो मालिक ने हिबा कब किया है, जब चोरी पूरी हो चुकी है, चोरी के बाद मालिक ने उसको हिबा किया तो फिर भी चोर का हाथ नहीं काटा जाता। और यहां तो चोर इस माल का मालिक बन रहा है चोरी से पहले ही, तो यहां बतरीके औला उसका हाथ नहीं काटा जाएगा जब मालिक इससे जमान ले। भाई तो कहते हैं फसार कमा इदा मलकहू बिल हिबती, तो ये इसी तरह हो गया कि जैसे चोर जो है उस चीज का मालिक बन गया हो हिबा की वजह से। फाओरसा शुबहतन, तो इसने शुबा पैदा कर दिया और शुबे की वजह से हद साकित होती है। वहादा कुल्लुहू इदा कानन नुकसानु फाहिशन, और ये सारा इख्तिलाफ और ये सारी तफसीलात जो हैं उस वक्त है, इजा कानन नुकसानु फाहिशन, जबकि वो नुकसान ज्यादा हो। चोर ने ये कपड़ा फाड़ा है तो इसमें कसीर नुकसान कर दिया, और मैंने आपको बतलाया था अगर थोड़ा नुकसान हो तो फिर मालिक को इख्तियार नहीं, फिर मालिक को वही चीज वापस लेना पड़ेगी और साथ जमान लेना पड़ेगा। तो कहते हैं वहादा कुल लुहू, और ये वाला इख्तिलाफ इन सारी तफसीलात उस वक्त है, इजा कान नुकसान उफाहिशन, जब वो नुकसान ज्यादा हो। फइन कान यसीरन, अगर वो नुकसान थोड़ा सा है, युक्ताउ बिल इत्तिफाकी, तो इस सूरत में बिल इत्तिफाक चोर का हाथ काटा जाएगा। क्योंकि जब नुकसान थोड़ा सा है तो वहां तो चोर मालिक ही नहीं बन सकता, वहां तो मालिक को नुकसान का जमान ही लेना पड़ेगा, वो चोर को उस माल का मालिक नहीं बना सकता। तो कहते हैं फइन काना यसीरन, और अगर वो नुकसान थोड़ा सा था तो युक्तौ बिल इत्तिफाकी, तो उस चोर का हाथ बिल इत्तिफाक काटा जाएगा। लिन इदामी सबबिल मिल्की, इसलिए क्योंकि मिल्कियत का सबब नहीं पाया गया। इस लैस लहू इख्तियार तजमीन कुल्लिल कीमती, इसलिए क्योंकि इस सूरत में मालिक को इख्तियार नहीं है तजमीन कुल्लिल कीमती, कि वो चोर को सारी कीमत का जामिन बना दे। जब नुकसान थोड़ा सा है तो वो नुकसान ही का जमान ले सकता है, वो चीज भी वापस लेनी पड़ेगी और वो नुकसान का जमान ही लेना पड़ेगा, पूरी चीज की कीमत वसूल नहीं कर सकता। जी बात समझ में आ गई। तो यह माना है इस लैस लहु इख्तियारु तज़मीन कुल्लिल क़ीमती, इसलिए क्योंकि इस सूरत के अंदर मालिक को इख्तियार नहीं है कि वो चोर को उस चीज की सारी कीमत का जामीन बना दे। बात समझ में आ गई। हासिल कलाम फिर समझ लें, यह मसला जरा पेचीदा था भाई। सूरत यह है, एक शख्स एक घर के अंदर दाखिल हुआ और वहां उसने कोई चीज चोरी की नीयत से उठाई और वहीं पर घर से निकलने से पहले ही उसने उसमें ऐसी तब्दीली पैदा कर दी जिसकी वजह से उस चीज में बहुत ज्यादा नुकसान आ गया। और जब चीज में बहुत ज्यादा नुकसान आ जाए तो मालिक को इख्तियार होता है कि चाहे वो ये चीज वापस ले और साथ नुकसान का जमान वसूल कर ले, और चाहे तो इस चीज को उस शख्स के पास ही रहने दे और उस चीज की पूरी कीमत वसूल कर ले। तो चोर ने वो कपड़ा फाड़ दिया, उसके दो हिस्से कर दिए और फिर वो कपड़ा लेकर घर से निकल आया। अब अगर वो कपड़ा उसकी कीमत जो है फाड़ने के बाद भी 10 दिरहम थी तो तरफेन फरमाते हैं इसका हाथ काटा जाएगा, जबकि इमाम अबू यूसुफ रमला फरमाते हैं कि नहीं, इसका हाथ नहीं काटा जाएगा। वजह यह कि इस चोर के लिए इस माल के अंदर सबबे मिल्क पैदा हो गया है, यहां एहतमाल आ गया कि चोर इसका मालिक बन सकता है। और माले मसरूक के अंदर चोर के लिए जब सबबे मिल्क पैदा हो जाए तो उसका हाथ नहीं काटा जा सकता। जैसे एक मुश्तरी जो है उस मबीए को चोरी कर लेता है जिसका खियार बाय ने अपने लिए रखा था, और जब बाय ने खियार अपने लिए रखा था तो अब मुश्तरी उसका मालिक तो नहीं बना, मुश्तरी अभी उसका मालिक तो नहीं बना, लेकिन मुश्तरी के लिए सबबे मिल्क तो पैदा हो चुका है, लिहाजा इस चोरी के अंदर मुश्तरी का हाथ नहीं काटा जाएगा। इसी तरह इस कपड़े के अंदर चोर के लिए सबबे मिल्क पैदा हो चुका है, लिहाजा इस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। तो तरफेन जवाब देते हैं कि ये जो चोर ने खर्के कसीर के साथ कपड़ा उठाया है, इस तरह का उठाना ये मिल्कियत का सबब नहीं है, ये तो जमान का सबब है। हां वो अलग बात है, ये जमान मिल्कियत तक पहुंचा देता है, तो ये जमान का सबब है, मिल्कियत का सबब नहीं। जब मिल्कियत का सबब नहीं तो इसके अंदर फिर चोर का हाथ काटा जाएगा। और ये इसी तरह है जैसे एक बाय ने ऐब वाला मबीआ किसी को बेच दिया, अब इस मबीए में चूंकि ऐब है और ऐब सबब रद्द है कि ये चीज बाय को वापस लौटाई जा सकती है, और फिर बाय ने वो मबीआ जो ऐब वाला था उसको बाय ने चोरी कर लिया, तो अब अगरचे इस मबीए के अंदर सबब रद्द मौजूद था फिर भी बाय का हाथ काटा जाएगा, क्योंकि सबब रद्द था, सबब मिल्कियत तो नहीं था। सबब रद्द बेशक मिल्कियत तक पहुंचा देता है लेकिन ऐब है तो सबब रद्द ही, सबब मिल्कियत तो नहीं है, तो इसके अंदर इस बाय का हाथ काटा जाएगा। भाई बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदायत ने आपको यह भी बतलाया कि यह जो तरफेन का इमाम अबू यूसुफ रमल्ला से इख्तिलाफ है यह उस सूरत में है जब मालिक वो कपड़ा वापस ले ले और साथ नुकसान का जमान ले ले, और अगर मालिक ने कपड़ा न लिया बल्कि पूरे कपड़े की कीमत वसूल की चोर से तो फिर इस सूरत में बिल इत्तेफाक चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। बात समझ में आ गई। और यहां अलबत्ता एक शुबा आपके जहन में आएगा, शुबा ये कि इन्होंने कहा कि यह इख्तिलाफ उस सूरत में है जब मालिक नुकसान का जमान ले और कपड़ा भी वापस ले और जो नुकसान है उसका जमान ले ले, तो इस सूरत में तरफेन के नजदीक इसका हाथ काटा जाएगा और इमाम अबू यूसुफ रमला के नजदीक इस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। तो इश्काल होता है कि जमान भी लिया जाए और हाथ भी काटा जाए। आपने तो हमें बताया था कि जमान और कता जमा नहीं हो सकते, और यहां आप हमें क्या बतला रहे हैं कि यह इख्तिलाफ किस सूरत में है जब मालिक उस चीज को भी वापस ले ले और साथ नुकसान का जमान भी ले ले, तो ये तो कता के साथ जमान जमा हो गया, हालांकि आपने हमें बताया था कि कता के साथ जमान जमा नहीं हो सकता। तो उसका जवाब देते हैं उलमा, कहते हैं नहीं भाई, ये जो जमान आया है ये चोरी की वजह से नहीं आया, ये जो जमान आया है ये चोर का एक अलग फेल था, चोरी से पहले ही इसने कपड़ा फाड़ दिया था। तवज्जो है, तो चोरी से पहले इसने कपड़ा फाड़ा है उसके बाद इसने चोरी की है, तो चोरी की वजह से कोई जमान नहीं आया ये, बल्कि चोरी से पहले एक अलग फेल था उसकी वजह से चोर पर जमान आया है। सूरत समझ में आ गई। आगे देखिए, कहते हैं वह इन सारा का शातन फजा बहाहा सुम्मा अखराजहा लम युक्ता। सूरत है मसला यह कि एक चोर एक घर के अंदर दाखिल हुआ चोरी के लिए, वहां एक बकरी थी, चोर ने उसको जिबा किया भाई, और फिर उस जिबा शुदा बकरी को लेकर आ गया, तो क्या इस सूरत में हाथ काटेंगे? कहते हैं नहीं, इस सूरत में हाथ नहीं काटेंगे, इसलिए क्योंकि चोर ने जो चोरी की है वो बकरी नहीं चोरी की, गोश्त को चोरी किया है। बकरी को तो इसने जिबा कर दिया भाई, तो अब ये गोश्त है भाई। और आपने पढ़ा था कि वो चीजें जो जल्दी खराब होने वाली हों उनकी चोरी में हाथ नहीं काटा जा सकता, और गोश्त भी जल्दी खराब होने वाली चीज है, लिहाजा इसके अंदर भी चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। तो कहते हैं वह इन सारा का शातन, और अगर चोर ने भेड़ बकरी चोरी की, फजा बहा तो उसको जिबा कर दिया यानी वहीं पर, सुम्मा आखरा जहा फिर उसको वहां से उसने उस घर से उसने निकाला, लम युक्ता तो इस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, ले अन्न सरिकता तम्मत अलल लहमी इसलिए क्योंकि ये चोरी गोश्त पर पूरी हुई है, वला कता फी ही और गोश्त के अंदर तो कता नहीं है। आगे देखिए वह मन सरका जहबन औ फिज़्ज़तन यजिबु फीहिल क़त्उ भाई, अब ये वो सूरत आ गई जिसमें फुकाहा आपस में इख्तिलाफ करते हैं। मसलन कोई चोर कोई चीज चुरा कर ले गया और चोर ने उसमें तब्दीली पैदा कर दी, तो बाज़ फुकाहा फरमाते हैं कि इस तब्दीली की वजह से इस चीज की कीमत बढ़ गई, बल्कि इसकी ऐन और इसकी जात ही बदल गई, अब ये कोई और ही चीज बन गई है, लिहाजा चोर इसका मालिक बन गया। जब इस चीज की जात ही बदल गई तो चोर इसका मालिक बन गया है, जबकि बास फुकाहा उसमें फरमाते हैं कि इस तब्दीली की वजह से इस चीज की कीमत में कमी आई है, और इस तब्दीली की वजह से वो चोर जो है उस चीज का मालिक नहीं बना, क्योंकि क्योंकि उस चीज की जात वही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तवज्जो है, बास फुकाहा क्या फरमाते हैं कि चीज की जात ही बदल गई, ये वो पहले वाली चीज रही ही नहीं, लिहाजा चोर मालिक बन चुका है इस चीज का, और जबकि बास फुकाहा फरमाते हैं कि नहीं, इस तब्दीली की वजह से इस चीज की जात और हकीकत नहीं बदली, ये चीज अभी भी उसी मालिक की है। भाई देखिए भाई, कहते हैं वमन सारा का जहबन औ फिज़्ज़तन यजिबु फीहिल क़त्उ, जहबन औ फिज़्ज़तन देखिए ये नकेरा है, और आगे यजिबु फेल जो है ये इनके लिए सिफत बनेगा। तो कहते हैं वमन सारा का जहबन औ फिज़्ज़तन, और जिस शख्स ने ऐसा सोना या ऐसी चांदी चोरी कर ली कि यजिबु फीहिल क़त्उ, के जिसके अंदर कता वाजिब होती है, यानी निसाब के बकदर सोना या चांदी किसी ने चोरी कर लिया, फसनाहु दराहिमा औ दनानीरा फिर उसने उसे दिरहम या दीनार बना लिए, कुतिअ फीही तो इस चोरी के अंदर उसका हाथ काटा जाएगा, इस चोरी में उसका हाथ काटा जाएगा, वयुरद्दु दराहिमु वद्दनानीरु इलल मसरूक मिनहु और ये दिरहम और दीनार जो है मसरूक मिनहु को वापस किए जाएंगे, वहादा इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्ला और ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमला के नजदीक है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमला फरमाते हैं कि इसने सोना या चांदी गसब किया था और इससे इसने दिरहम या दीनार बना लिए हैं, लेकिन ये वो ही चीज है। तो कहते हैं वहादा इंदा अबी हनीफा रहमहुल्ला और ये इमाम साहब के नजदीक है, इमाम साहब के नजदीक इस चोर का हाथ भी काटा जाएगा, और ये दिरहम और दीनार जो इसने बना लिए हैं इनका मालिक अभी भी वही शख्स है, इनका मालिक अभी भी वही मसरूक मिनहू है, लिहाजा ये उसको वापस किए जाएंगे। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, जब इसने दिरहम और दीनार बना लिए तो उस चीज की ऐन ही बदल गई, उस चीज की जात ही बदल गई, वो पहली चीज ये रही ही नहीं, जब ये और चीज बन गई तो चोर इसका मालिक बन गया, चोर इसका मालिक बन चुका है। बात समझ में आ गई, लिहाजा ये दिरहम और दीनार उस मालिक को वापस नहीं किए जा सकते क्योंकि चोर इनका मालिक बन चुका है भाई। तो कहते हैं वकाला और साहिबैन फरमाते हैं ला सबील लिल मसरूक मिनहु अलैहिमा कि कोई रास्ता नहीं है मसरूक मिनहु का इन दोनों पर, मसरूक मिनहु का इन दिरहम और दीनारों पर कोई रास्ता नहीं, यानी उसका अब इनमें कोई हक नहीं है, चोर इनका मालिक बन चुका है, उसने इस माले मसरूका के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा कर दी कि उसका नाम ही बदल गया, पहले उसको सोना और चांदी कहते थे, अब इसको दिरहम और दीनार कहते हैं भाई, और नीस नीज मकासिद भी बदल गए, सोने और चांदी के मकासिद और होते हैं, दिरहम और दीनार के मकासिद और हैं। भाई सोना और चांदी उसके तो और भी मकासिद हैं, जेवर वगैरह बनाए जाते हैं, जेबो जीनत के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दिरहम और दीनार इनके जरिए तो बैउ शिरा की जाती है, तो दोनों के मकासिद भी अलग अलग हैं। तो साहिबैन फरमाते हैं कि चोर ने उस माले मसरूखा के अंदर इतनी तब्दीली पैदा कर दी कि उसका नाम भी बदल गया और उसके मकासिद भी बदल गए, तो चोर इसका मालिक बन गया। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, इस चोर का हाथ काटा जाएगा और ये दिरहम और दीनार उसी मालिक को वापस लौटाए जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये वही चीज है, ये वही सोना और चांदी है। भाई ये वही सोना और चांदी है, यानी हुक्म के एतबार से ये वही है। जैसे दिरहम और दीनार बतौर समन के इस्तेमाल होते हैं, सोना और चांदी भी बतौर समन के इस्तेमाल होते हैं, तो हुक्म के एतबार से ये वही चीज है। जब वही चीज है तो अभी भी वही शख्स इसका मालिक है भाई। और नीज इनको पहली हालत पर आसानी से लौटाया जा सकता है, इस दिरहम और दीनार को फिर बदलकर वापस सोना और चांदी बनाया जा सकता है। और साहिबैन फरमाते थे कि इसका नाम बदल गया है, इमाम साहब फरमाते हैं नाम बेशक बदल गया है लेकिन वो नाम कोई लाजिम नहीं है। अगर ये दिरहम और दीनार को आप पिघलाकर फिर दोबारा इनसे सोना और चांदी बना लेते हैं तो वो नाम खत्म हो जाएगा। मालूम हुआ नाम बदला तो है लेकिन वो लाजिम नहीं है, वो खत्म भी हो सकता है। तो इमाम साहिब के नजदीक ये दिरहम और दीनार उसी मालिक के हैं, उसको वापस लौटाए जाएंगे। और साहिबैन के नजदीक ये दिरहम और दीनार जो हैं, चोर इनका मालिक बन चुका है। भाई फिर जरा तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वमन सरका ज़हबन औ फिज़्ज़तन यजिबु फीहि अल-क़त्उ, और जिस शख्स ने ऐसा सोना या ऐसी चांदी चोरी कर ली कि जिसके अंदर कता वाजिब होती है, फसनअहु दराहिम औ दनानीरा, फिर उस चोर ने इनसे दिरहम और दीनार बना लिए, कुतिअ फीहि, तो इसके अंदर उस चोर का हाथ काटा जाएगा। यह इमाम साहब का मजहब जिक्र हो रहा है, तो इसके अंदर चोर का हाथ काटा जाएगा, वयुरद्दु दराहिमु वद्दनानीरु इला मसरूक मिनहू, और वो दराहिम और दीनार जो है मसरूक मिनहू को वापस किए जाएंगे क्योंकि वो अभी भी इनका मालिक है। वहां अदा इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्ला, और ये इमाम साहिब के नजदीक है। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं ला सबील लिल मसरूक मिनहू अलैहिमा, कि मसरूक मिनहू का इन दिरहम और दीनारों पर कोई रास्ता नहीं, यानी उसका अब इनमें कोई हक नहीं, चोर इनका मालिक बन चुका है क्योंकि चीज ही बदल चुकी है। भाई वह असलूहू फिल गस भी, आगे साहिब हिदाया फरमा रहे हैं, कहते हैं वह असलूहू फिल गस भी, कि इस इख्तिलाफ की असल गसब के अंदर है। यानी इमाम साहब और साहिबैन का यहां पर जो इख्तिलाफ है, इस इख्तिलाफ की असल गसब के अंदर है। गसब के मसले में भी इमाम साहब और साहिबैन इसी तरह इख्तिलाफ करते हैं। अगर एक शख्स दूसरे शख्स का सोना या चांदी गसब कर लेता है और फिर उसे दिरहम या दीनार बना लेता है, तो इमाम साहब के नजदीक अभी भी ये दिरहम और दीनार उसी मालिक के हैं, ये इसको वापस लौटाने पड़ेंगे। जबकि साहिबैन फरमाते हैं नहीं, कि अब वो चीज ही बदल गई, लिहाजा गासिब मालिक बन गया है, अब गासिब से सिर्फ जमान वसूल किया जा सकता है। तो कहते हैं वह असलुहू फिल गस्बी, और इस इख्तिलाफ की असल जो है वो गसब के अंदर है। फहादिही सनअतुन मुतकव्विमतुन इंदहुमा, फहादिही सनअतुन, तो ये ऐसी कारीगरी है, मुतकव्विमतुन, जो कीमत वाली है, इंदहुमा, साहिबैन के नजदीक। साहिबैन फरमाते हैं कि ये जो सोने और चांदी से इसने दिरहम और दीनार बनाए और इनमें अपनी कारीगरी दिखाई, ये कारीगरी कीमत वाली है, इसकी वजह से इस माल की कीमत बढ़ गई, कीमत भी बढ़ गई, नाम भी बदल गया और मकासिद भी बदल गए। तो कहते हैं फहादिही सनअतुन मुतकव्विमतुन इंदहुमा, तो ये कीमत वाली कारीगरी है साहिबैन के नजदीक, खिलाफ अल्लहू, बखिलाफ इमाम साहिब के। वो फरमाते नहीं, इसकी वजह से उस सोने और चांदी की कीमत बढ़ी नहीं है बल्कि कम हो गई है। भाई आगे देखिए, सुम वजूबुल हद्दिला युश्किलु अला कौलिही। अच्छा भाई, मतन में आया कि इस चोर का हाथ काटा जाएगा, इस चोर का हाथ काटा जाएगा, तो क्या यह सिर्फ इमाम साहब के नजदीक है या साहिबैन के नजदीक भी इसी तरह है? तो आपको बतलाएंगे कि इमाम साहब के कौल पर तो कता पर कोई इश्काल ही नहीं होता, क्योंकि इमाम साहब के नजदीक चोर इस माल का मालिक नहीं बना, यह माल उसी मालिक का है, लिहाजा इसमें उस चोर का हाथ काटा जाएगा भाई। जबकि साहिबैन, साहिबैन के कौल की सूरत में अगर कहा जाए हाथ काटा जाएगा तो फिर उन पर इश्काल होता है कि साहिबैन तो फरमाते हैं चोर इसका मालिक बन चुका है, जब मालिक बन गया है तो चोर पर जमान आएगा, और जब जमान आ जाए तो फिर वहां कता नहीं हो सकता। तो यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं सुम वजूब उल हदी, फिर हद का वाजिब होना यानी कता का वाजिब होना, ला युश्किलु अला कौली ही, ये मुश्किल नहीं है इमाम साहब के कौल पर। अशकला युश्किलु का माना मुश्किल होना, पेचीदा होना, या इसी तरह एतराज होना। तो आप चाहे लायुश्किलु का तर्जमा कर लें कि मुश्किल नहीं है, पेचीदा नहीं है, या आप इसका तर्जमा एतराज के साथ भी कर सकते हैं। सुम वजूबुल हद्दी, फिर हद का वाजिब होना, लायुश्किलु अला कौली ही, इस पर एतराज नहीं होता इमाम साहब के कौल पर, लिअन्नहु ला यमलिकुहु, इसलिए क्योंकि चोर इन दिरहमों और दीनारों का मालिक ही नहीं बना। तो ये तो इमाम साहब के नजदीक है, साहिबैन के कौल पर एतराज होता है, उनके नजदीक तो चोर इसका मालिक बन चुका है, तो क्या साहिबैन के कौल पर भी हाथ काटा जाएगा या नहीं। तो इसमें फुकहा दोनों तरफ गए हैं, बास फुकहा फरमाते हैं साहिबैन के कौल पर भी हाथ काटा जाएगा, जबकि बास फरमाते हैं कि नहीं, साहिबैन के कौल पर हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वकीला अला कौलिहिमा ला यजिबू, और कहा गया है कि साहिबैन के कौल पर कता वाजिब नहीं होगी, ये यूं कहें हद वाजिब नहीं होगी, लिअन्नहु मलकहु क़ब्ल अल-क़त्ई, इसलिए क्योंकि चोर जो है इनका मालिक बन गया कता से पहले ही, चोर ने जब इनमें कारीगरी दिखाई तो चोर इनका मालिक बन गया, और जब मालिक बन गया तो चोर पर जमान आ गया, और जब जमान आ गया तो अब कता नहीं हो सकता। तो कहते हैं वकीला अला कौलिहिमा ला यजिबू, और कहा गया है कि साहिबैन के कौल पर हद वाजिब नहीं होगी, लिअन्नहु मलकहु क़ब्ल अल-क़त्ई, इसलिए क्योंकि वो चोर जो है इनका मालिक बन गया है कता से पहले ही। वकीला, और कहा गया है, बस वो कहा फरमाते हैं, कहते हैं वकीला, और कहा गया है यजिबू के साहिबैन के कौल पर भी हद वाजिब होगी, लिअन्नहु सारा बिसनअति शैअन आखरा, इसलिए क्योंकि वो माल जो है वो कारीगरी की वजह से दूसरी चीज बन गया, कारीगरी की वजह से एक नई चीज बन गया। चोरी तो किया था सोना या चांदी, तो ये सोने या चांदी का मालिक नहीं बना, ये एक नई चीज बनी है उसका मालिक बना है, तो असल का तो मालिक नहीं बना, जब असल का मालिक नहीं बना तो हाथ काटा जाएगा। ये बास फुकाहा फरमाते हैं भाई। तो कहते हैं वकील यजिबू, और कहा गया है कि हद वाजिब होगी साहिबैन के कौल पर भी, लिअन्नहु सारा बिसनअति शैअन आखरा, इसलिए क्योंकि ये माल जो है ये कारीगरी की वजह से एक दूसरी चीज बन गया है। फलम यमलिक ऐनहु, लिहाजा ये ऐन उस माल का मालिक नहीं बना, ये तो एक नई चीज का मालिक बन गया है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, फइन सारका सौबन फसबगहु अहमर कुतिया वलम युखद मिनहु सौब वलम यजमन कीमत सौब वहादा इंद अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह وقال محمد رحمه الله تعالى يؤخذ منه الصوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه। भाई अब वो सूरत आ गई कि जिसके अंदर चोर ने उस माल मसरूका में ऐसी कारीगरी दिखाई कि जिसकी वजह से उस माल की कीमत बढ़ गई। पहली सूरत क्या जिक्र फरमाई थी कि उस माल में नुकसान आ गया था, मसलन कपड़ा फाड़ दिया था, और दूसरी सूरत वो जिक्र फरमाई कि जिसमें हमारे अइम्मा का इख्तिलाफ था, और अब तीसरी सूरत जिक्र फरमा रहे हैं कि चोर की कारीगरी की वजह से उस माल की कीमत बढ़ गई भाई। तो कहते हैं फइन सारका सौबन फसबगहु अहमरा, तो पहले मसला समझ लीजिए भाई, याद रखो मसलन चोर ने कोई चीज चोरी की और फिर उसके अंदर ऐसी कारीगरी दिखाई यानी उसमें ऐसी तब्दीली पैदा की कि जिसकी वजह से उस चीज की कीमत बढ़ गई। मसलन चोर ने सफेद कपड़ा चोरी किया था और फिर उचोर ने उसको सुर्ख रंग दे दिया, तो इस सुर्ख रंग की वजह से कपड़े की कीमत बढ़ गई। मसलन पहले अगर यह कपड़ा 10 दिरहम का था तो अब इसकी कीमत 15 दिरहम हो गई है। तो इस सूरत में याद रखो, अगर यह चोर पकड़ा गया तो शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं इस चोर का हाथ काटा जाएगा। अलबत्ता चोर इस कपड़े का मालिक बन चुका है, तो अगर यह कपड़ा चोर के पास मौजूद हुआ तो चोर से यह कपड़ा नहीं लिया जाएगा, और अगर यह कपड़ा चोर के पास हलाक हो चुका है तो फिर चोर का हाथ काट दिया गया है, लिहाजा चोर पर जमान नहीं आएगा, क्योंकि कता और जमान जमान नहीं हो सकते। तवज्जो है। तो शेखैन रहमहुमल्लाह के नजदीक यह चोर जिसने माल में ऐसी कारीगरी दिखाई जिससे माल की कीमत बढ़ गई, चोर इसका मालिक बन गया, लिहाजा चोर का हाथ तो काटा जाएगा, अलबत्ता अगर यह चीज उसके पास मौजूद हुई तो यह उससे वापस नहीं ली जाएगी, और अगर यह चीज उसके पास हलाक हो चुकी है तो फिर चोर पर जमान नहीं आएगा, क्योंकि जब कता आ गई है तो वहां फिर जमान नहीं आ सकता। तो कहते हैं फइन सरका सौबन फसबगहु अहमारा कुतिया, और अगर किसी ने कोई कपड़ा चुरा लिया फसबगहु अहमारा फिर उसको सुर्ख रंग दे दिया कुतिया तो फिर इस चोर का हाथ काटा जाएगा। वलम युखद मिनहु सौब, और इस चोर से कपड़ा नहीं लिया जाएगा, यानी अगर कपड़ा उसके पास मौजूद है अभी भी तो वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि चोर उसका मालिक बन चुका है। तो कहते हैं वलम युखद मिनहु सौब, और उस चोर से कपड़ा नहीं लिया जाएगा। वलम यजमन कीमत सौबी, और चोर जो है उस कपड़े की कीमत का जामिन नहीं होगा अगर वो उसके पास हलाक हो चुका है। वहादा इंद अबी हनीफ अथवा अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, और ये शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक है। यहां आपके जहन में इश्काल आएगा कि आपने कहा कि अगर यह कपड़ा मौजूद हुआ तो चोर से वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि चोर इसका मालिक बन चुका है। अगर चोर मालिक बन गया है तो आपने हमें जाब्ता बतलाया कि माले मसरूका के अंदर अगर सबबे मिल्क पैदा हो जाए तो फिर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। तो उसका जवाब याद रखना कि भाई यहां पर चोर ने जो कपड़ा चोरी किया था वो सफेद कपड़ा था, यानी वो और चीज थी, और जिस कपड़े का ये मालिक बना है वो सुर्ख कपड़ा है, ये और चीज है। तो यूं कहो कि जो चीज चोर ने चोरी की थी चोर उसका मालिक नहीं बना, चोर किसी और चीज का मालिक बना है। तो जब वो उस माले मसरूका का मालिक नहीं बना तो इसका हाथ काटा जाएगा भाई। तो शेखैन रहमहुमल्लाह के नजदीक जो है इस चोर का हाथ काटा जाएगा और इससे कपड़ा नहीं लिया जाएगा, और अगर कपड़ा हलाक हो गया है तो उस पर जमान भी नहीं आएगा। وقال محمد رحمه الله تعالى يؤخذ منه الثوب, और इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं कि इस चोर से कपड़ा लिया जाएगा। इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं कि बेशक कपड़े की कीमत बढ़ गई है लेकिन फिर भी चोर इस कपड़े का मालिक नहीं बना, लिहाजा अगर चोर पकड़ा गया तो चोर का हाथ काटेंगे और यह कपड़ा मालिक को वापस दिलाएंगे अगर यह कपड़ा मौजूद हुआ। तो कहते हैं वकाल मोहम्मद रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं युखदु मिनहु सौबु, कि उस चोर से वो कपड़ा लिया जाएगा। व युअता मा ज़ाद अस्सिबगु फीही, और दिया जाएगा वो जो रंग ने उस कपड़े में ज्यादती की है, यानी कपड़े की कीमत पहले 10 दिरहम थी, अब रंग की वजह से इसकी कीमत 15 दिरहम हो गई है, लेकिन कपड़ा फिर भी उसी मालिक का है। तो जब मालिक को कपड़ा वापस किया जाएगा तो रंग की वजह से जो उस कपड़े की कीमत में ज्यादती आई है वो मालिक से लेकर चोर को दिला दी जाएगी, यानी मालिक ये कपड़ा तो ले लेगा अलबत्ता 5 दिरहम चोर को दे देगा वो जो कपड़े की कीमत बढ़ी थी भाई। तो यह माना है कि उस चोर से कपड़ा लिया जाएगा। वही औता माजाद अस्सिबगुफी ही, और चोर को दिया जाएगा वो जो रंग ने उस कपड़े में ज्यादती की है। एतबार अम्बिल गसबी, गसब पर कियास करते हुए, इमाम मोहम्मद रहमल्ला इसको गसब के मसले पर कियास करते हैं, और गसब के अंदर याद रखो बिल इतफाक हमारे अइमा के नजदीक अगर कोई शख्स किसी का कपड़ा गसब कर ले और फिर मसलन उसके अंदर उसने अपनी कारीगरी दिखाई और उसकी कीमत बढ़ गई, मसलन उसने उसको सुर्ख रंग दे दिया और उसकी कीमत बढ़ गई, फिर भी हमारे अइमा फरमाते हैं मालिक का हक इस कपड़े से खत्म नहीं हुआ, गासिब इस कपड़े का मालिक नहीं बना। जब गासिब मालिक नहीं बना तो यह कपड़ा मालिक को वापस करना पड़ेगा। अलबत्ता उस कारीगरी की वजह से उस कपड़े की जितनी कीमत बढ़ गई है वो फिर अलबत्ता मालिक से वसूल करके गासिब को दे दी जाएगी। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिस तरह गसब के अंदर गासिब उस कपड़े का मालिक नहीं बनता, इसी तरह यह चोर भी इस कपड़े का मालिक नहीं बनेगा। यह माना है एतबारम बिल गसबी, गसब पर कयास करते हुए, वल जामियु बैनहुमा कौन सौबी असलन काइमन व कौन सिबगे ताबियन। भाई यहां से इल्लत जामिया बयान कर रहे हैं इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं गसब के अंदर जैसे गासिब कपड़े का मालिक नहीं बन जाता रंग देने की वजह से, बल्कि उसको वो कपड़ा वापस करना पड़ेगा, इसी तरह चोरी के मसले के अंदर भी ये चोर इस कपड़े का मालिक नहीं बनेगा, ये कपड़ा उसको वापस करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों के दरमियान इल्लत जामिया क्या है? चोरी का मसला हुआ मकीस यानी जिसको कियास किया गया है, और गसब जो है वह है मकीसुन आले। और आप जानते हैं एक चीज को दूसरी चीज पर कियास किया जाता है किसी इल्लत जामिया की वजह से, यानी ऐसी इल्लत जो मकीस और मकीस अले दोनों में पाई जा रही है। तो जब मकीस अले के अंदर एक इल्लत मौजूद है और उसका हुक्म भी मालूम है, तो जब वही इल्लत हमें एक दूसरी चीज में मिलती है तो हम उसको भी वही हुक्म दे देते हैं। तो यहां इल्लत जामिया क्या है? तो याद रखो, आपको साहिब हिदायत बतलाएंगे कि यहां पर इल्लत जामिया यह है कि कपड़ा जो है असल है और रंग जो है उसका वसफ है, उसके ताबिया है। तो लिहाजा जब असल मौजूद है तो फिर ताबिया का एतबार नहीं किया जाएगा। गसब के मसले में भी असल कपड़ा मौजूद है तो रंग का एतबार नहीं किया जाएगा, और चोरी के मसले में भी कपड़ा असल है तो उसका एतबार किया जाएगा, वसफ का एतबार नहीं किया जाएगा। यानी वसफ के बदलने से चोर या गासिब उस कपड़े का मालिक नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं एतबारम बिल गसबी, गसब पर कयास करते हुए, वल जामियु बैनहुमा, और इल्लत जामिया दोनों के दरमियान जो है, कौनु सौबी असलन काइमन, वो कपड़े का असल होना और मौजूद होना है, वह कौन सिबगे ताबियन, और रंग का ताबिया होना है। कपड़ा असल है और रंग ताबिया है तो असल का एतबार किया जाएगा गसब के मसले में भी और चोरी के मसले में भी। भाई वलहुमा, अब शेखैन रहमहुमल्ला की दलील आ गई। वलहुमा, शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि अन्नसिबगा काइमुन सूरतन व मानन। भाई पहले शेखैन रहमहुमल्ला की दलील यही पहले समझ लें। याद रखो, शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि चोरी का मसला गसब के मसले से मुख्तलिफ है, तो जब दोनों मसले एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो फिर आप एक को दूसरे पर कियास नहीं कर सकते। एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कियास किया जाता है, दो मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे पर कियास नहीं किया जाता। तो यहां चोरी के मसले में कहते हैं चोर ने जब कपड़े को रंग दे दिया तो उस कपड़े का रंग बदल गया तो सूरतन उसके अंदर चोर का हक आ गया। कपड़े का रंग, देखो कपड़े का रंग बाकायदा बदल चुका है, और ये रंग किसने बदला है? चोर ने। तो ये चोर का हक है, तो सूरत के एतबार से कपड़े के अंदर चोर का हक आ गया, और माना के एतबार से भी चोर का हक आ गया है कि ये कपड़ा अगर चोर से वापस मालिक को दिलाया जाए तो इस सूरत में इस रंग की वजह से जो कपड़े की कीमत बढ़ गई है वो कीमत मालिक को देना पड़ेगी। मसलन मालिक का कपड़ा था 10 दिरहम का और रंग की वजह से उसकी कीमत बढ़कर 15 दिरहम हो गई है, और मालिक फिर भी कहता है मेरा कपड़ा मुझे दिलाया जाए, तो मालिक को यह कपड़ा वापस करेंगे, और रंग की वजह से जो 5 दिरहम इसकी कीमत बढ़ गई है वो 5 दिरहम मालिक को अदा करने पड़ेंगे कि वो चोर के हवाले करे। तो तरफैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं इस कपड़े के अंदर चोर का हक सूरतन भी आ गया है और मानन भी। सूरतन किस तरह आया? कि उस कपड़े का रंग बदल गया है, हमें नजर आ रहा है। और माना के एतबार से भी इस कपड़े में चोर का हक आ गया है कि अगर यह कपड़ा मालिक लेता है तो मालिक को जायद पैसे अदा करने पड़ेंगे। मालूम हुआ कीमत के एतबार से भी उसमें चोर का हक आ गया है, जबकि मालिक का हक इस कपड़े के अंदर सूरतन तो है लेकिन मानन नहीं। सूरतन किस तरह है? कि वही कपड़ा है, असल कपड़ा है, रंग तो उसके ताबिया, तो लिहाजा सूरत के एतबार से देखें तो यह वही मालिक की चीज है। मालिक की चीज भी कपड़ा था और यह भी कपड़ा है। अलबत्ता माना के एतबार से मालिक का हक बाकी नहीं। क्या माना? मतलब यह है अगर यह कपड़ा चोर के पास हलाक हो जाए तो चोर पर जमान नहीं आएगा, क्योंकि कता के साथ जमान जमा नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ मालिक का हक कपड़े के अंदर अब सिर्फ सूरतन है, मानन यानी कीमत के एतबार से नहीं है। अगर यह कपड़ा उस चोर के पास हलाक हो गया तो चोर पर जमान नहीं आएगा। तो मालूम हुआ चोर का हक कपड़े के अंदर सूरतन भी है और मानन भी है, और मालिक का हक सिर्फ सूरतन है मानन नहीं है। लिहाजा इसलिए हमने चोर की जानिब को तरजीह दी और यह कहा कि चोर इस कपड़े का मालिक बन चुका है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तो फरमाते थे मालिक नहीं बना, लेकिन हम कहते हैं नहीं, चोर की जानिब राजह है, उसका हक सूरतन भी है और मानन भी है, लिहाजा वो कपड़े का मालिक बन गया। तवज्जो है भाई, देखो चोर का हक कपड़े में है सूरतन भी और मानन भी, और मालिक का हक सिर्फ सूरतन है मानन नहीं है। तो दोनों जगह सूरत का लफ्ज आ रहा है, तो इसका यह माना नहीं कि दोनों से आप एक ही चीज मुराद ले लें। चोर का हक सूरतन है, क्या माना? कपड़े के अंदर वो रंग आ गया है जो चोर ने इसको रंग लगाया है भाई, और मालिक का हक है सूरतन, इसका क्या माना है कि कपड़ा वही है, चीज वही है जो इसका मालिक से इसने चोरी की थी। तवज्जो है, तो चोर का हक कपड़े में है सूरतन भी और मानन भी। सूरतन का क्या माना कि रंग कपड़े में आ चुका है, और मानन क्या माना कि कीमत बढ़ चुकी है उसकी। बात समझ में आ गई। और मालिक का हक सिर्फ सूरतन है मानन नहीं। सूरतन क्या माना कि वही चीज है वही कपड़ा है, और मानन मालिक का हक नहीं है। क्या माना कि अगर यह कपड़ा चोर के पास हलाक हो जाए तो चोर पर जमान नहीं आएगा। तो मालूम हुआ चोर का हक जायद हो गया मालिक से, लिहाजा हमने चोर की जानिब को तरजीह दे दी और चोर को इस कपड़े का मालिक करार दे दिया। जबकि गसब का मसला इससे मुख्तलिफ है, वो बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां तक देख लीजिए। कहते हैं वल्लहुमा, और शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्नसिबगा काइमुन सूरतन व मानन, के रंग जो है वो मौजूद है सूरत और माना दोनों एतबार से। रंग यानी चोर का हक, रंग किसका हक है? चोर का। तो शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि अन्नसिबगा काइमुन, के रंग मौजूद है यानी चोर का हक मौजूद है सूरतम व मानन, सूरत के एतबार से भी और माना के एतबार से भी। सूरत के एतबार से क्या माना यानी कपड़े का रंग बदल चुका है, सूरत के एतबार से हमें नजर आ रहा है। वह मानन, और माना के एतबार से भी चोर का हक है यानी कपड़े की कीमत बढ़ चुकी है। हत्ता लव अराद, देखो आगे खुद बयान कर रहे हैं माना से क्या मुराद है। कहते हैं हत्ता लव अराद अखजहू मसबूगन, यहां तक कि अगर मालिक ने इरादा किया अखजहू मसबूगन, इस कपड़े को रंगे हुए होने की हालत में ही लेने का, मालिक ने इस कपड़े को रंगे होने की हालत में ही लेने का इरादा किया। यज मनु माजाद सिबगुफी ही, तो मालिक जामिन होगा उस चीज का जो रंग ने इसमें बढ़ा दिया है, यानी वो जो जायद पैसे हैं वो मालिक अदा करेगा चोर को भाई। वह हकुल मालिक फी सौब काइमुन सूरतन ला मानन, और मालिक का हक जो है कपड़े के अंदर सूरतन मौजूद है मानन मौजूद नहीं। सूरतन मौजूद है, क्या माना यानी वही कपड़ा है, और मानन मौजूद नहीं, क्या माना कि अगर यह कपड़ा चोर के पास हलाक हो गया तो उस पर जमान नहीं आएगा, क्योंकि कता और जमान इकट्ठे नहीं हो सकते। तो कहते हैं वह हकुल मालिक फिर सौबिका इमुन सूरतन ला मानन, और मालिक का हक कपड़े में सूरतन मौजूद है ना कि मानन। अल्लाह तारा, क्या आप देखते नहीं अन्नहु गैरु मजमून इन अल सारिक बिल हलाकी, कि जो कपड़ा है गैरु मजमून इन अल सारिक बिल हलाकी, ये हलाकत की वजह से चोर पर मजमून नहीं होगा, चोर पर इसका जमान नहीं आएगा। फरजहना जानिब सारिकी, तो हमने चोर की जानिब को तरजीह दे दी और हमने कहा कि चोर इसका मालिक बन गया है। बेखिलाफिल गसबी, बखिलाफ गसब के, लिअन्न हक कुल वाहिदिन मिन्हुमा काइमुन सूरतन व मानन। भाई इधर देखिए, गसब के मसले के अंदर गासिब और मालिक दोनों का हक सूरतन भी है और मानन भी है। गासिब का हक सूरतन भी है गसब के अंदर, किस तरह सूरतन है, वही तकरीर जो पहले हुई थी, सूरतन गासिब का हक है उस माले मगसूबा के अंदर। सूरत के एतबार से यानी कपड़े के अंदर रंग आ गया है और माना के एतबार से भी गासिब का हक मौजूद है कि मालिक जब इसको वापस लेगा तो मालिक को वो जो जायद कीमत है वो अदा करना पड़ेगी कि वो गासिब के हवाले करे। बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ गसब के अंदर गासिब का हक सूरतन भी है और मानन भी है और इसी तरह मालिक का हक भी सूरतन भी है और मानन भी है। मालिक का हक सूरतन किस तरह कि वही चीज है वही कपड़ा है तो सूरतन भी मालिक का हक है और मानन भी मालिक का हक है कि अगर ये कपड़ा गासिब के पास हलाक हो गया तो गासिब को जमान देना पड़ेगा भाई। तो मालूम हुआ गसब के मसले में गासिब और मालिक दोनों का हक सूरतन भी है और मानन भी है और फिर हमने मालिक की जानिब को तरजीह दे दी
जी।
भाई क्या वजह है जब दोनों का हक सूरतन भी है और मानन भी है तो फिर मालिक के हक को आपने क्यों तरजीह दे दी? कहते हैं वजह यह है कि मालिक का हक जो है उस कपड़े के अंदर है जो असल है और चोर का हक रंग के अंदर है और रंग ताबिया है वसफ है तो असल को तरजीह दी जाएगी लिहाजा मालिक की जानिब को तरजीह होगी और मालिक का हक इस कपड़े से खत्म नहीं होगा। अभी भी मालिक अभी भी वही मगसूब मिनहू ही इस कपड़े का मालिक है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ अलगस्ब बखिलाफ गसब के लि अन्न हक कुल वाहिद मिनहुमा कायमुन सूरतन व मानन, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक का हक जो है वो सूरतन और मानन मौजूद है। फस्तवया मिन हादल वजही, तो ये दोनों बराबर हो गए इस एतबार से गासिब का हक भी सूरतन और मानन और मालिक का हक भी सूरतन और मानन। तो फस्तवया मिन हादल वजही, तो दोनों बराबर हो गए इस वजह से। फरज्जहना जानिबल मालिकी, तो हमने मालिक की जानिब को तरजीह दे दी। लिमा जकरना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि कपड़ा असल है और रंग ताबिया है वसफ है तो असल को तरजीह होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए व इन सबहु अस्वदा उखिज़ा मिन्हु फिल मज़हबैनी, भाई अब सूरत यह है कि उस चोर ने कपड़े को स्याह रंग दे दिया यानी काला रंग दे दिया, तो इस सूरत में याद रखो दोनों मजहबों के मुताबिक यह कपड़ा मालिक को वापस किया जाएगा अगर यह मौजूद हुआ। और इसमें साहिब हिदायत तफसील बयान फरमाएंगे कि इमाम साहिब के नजदीक ये जो काला रंग है ये कपड़े के अंदर नुकसान शुमार होता है, नुकसान शुमार होता है, जबकि साहिबैन के नजदीक ये काला रंग भी कपड़े के अंदर ज्यादती शुमार होता है, इससे कपड़े की कीमत बढ़ जाती है। उलमा फरमाते हैं कि इस मसले के अंदर जो इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है वो कोई दलाइल की वजह से इख्तिलाफ नहीं है बल्कि ये दरअसल जमाने का इख्तिलाफ है। इमाम साहब के जमाने के अंदर काला रंग जो है उसकी वजह से कपड़े की कीमत कम हो जाती थी और साहिबैन के जमाने में काले रंग की वजह से भी कपड़े की कीमत बढ़ जाती थी भाई। तो इमाम साहब के नजदीक ये काले रंग की वजह से कपड़े के अंदर नुकसान आ गया और नुकसान की वजह से तो चोर जो है उस चीज का मालिक नहीं बन सकता, लिहाजा ये कपड़ा मालिक को वापस करना पड़ेगा अगर ये कपड़ा चोर के पास मौजूद हुआ। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जैसे सुर्ख रंग से कपड़े में ज्यादती आती थी तो चोर उसका मालिक बन जाता था, तो इसी तरह स्याह रंग की वजह से भी कपड़े में ज्यादती आई है तो चोर उसका मालिक बन गया है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जैसे सुर्ख रंग की वजह से ज्यादती आती थी लेकिन चोर मालिक नहीं बनता था, तो स्याह रंग की वजह से भी ज्यादती आई है तो चोर मालिक नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन सब अगा हु अस्वदा, और अगर चोर ने उस कपड़े को स्याह रंग दे दिया, उखिज़ा मिन्हु फिल मज़हबैनी, तो यह कपड़ा उस चोर से लिया जाएगा दोनों मजहबों में यानी मालिक को वापस दिलाया जाएगा दोनों मजहबों में। इससे कौन मुराद है? कहते हैं यानी इंदा अबी हनीफा व मोहम्मदीन रहिमहुमल्लाह, यानी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मजहब में और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के मजहब में दोनों मजहबों के अंदर कपड़ा चोर को वापस दिलाया जाएगा। अलबत्ता इल्लत अलग अलग है। इमाम साहब के नजदीक इसलिए वापस दिलाया जाएगा क्योंकि काला रंग ऐब है नुकसान है, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक कपड़ा इसलिए वापस किया जाएगा कि अगरचे काला रंग भी ज्यादती है लेकिन ज्यादती की वजह से चोर उस माल का मालिक नहीं बनता। तो कहते हैं दोनों मजहबों के मुताबिक वो कपड़ा उस चोर से लिया जाएगा, यानी इंदा अबी हनीफा तब मोहम्मद रहिमहुमल्लाह, यानी इमाम साहब के नजदीक और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, व इंदा अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह तआला हादा वल अव्वल सवाउन, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक ये और पहला जो है दोनों बराबर हैं, ये सूरत और पहली सूरत दोनों बराबर हैं। उस सुर्ख रंग से भी ज्यादती आई थी तो चोर मालिक बन गया था, तो काले रंग से भी ज्यादती आई है तो चोर मालिक बन गया है, ये अब मालिक को वापस नहीं किया जाएगा। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक हाजा वल अव्वलु सवाउन, कि ये और पहला दोनों बराबर हैं, लिअन्ना सवाद ज़ियादतुन इंदहु कल हुमरति, इसलिए क्योंकि स्याही जो है वो ज्यादती है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक, कल हुमरति जैसे के सुर्खी है, वइंद मुहम्मदिन रहिमहुल्लाहु तआला ज़ियादतुन अयज़न कल हुमरति, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक भी ये काला रंग जो है ये ज्यादती है कल हुमरति सुर्ख रंग की तरह, वलाकिन्नहु ला यक्तौ हक्कल मालिक, लेकिन ये मालिक के हक को काटता नहीं है, अभी भी वही शख्स मालिक है तो वापस करना पड़ेगा। वह इंदा अभी हनीफत रहिमहुल्लाह, और इमाम साहब के नजदीक असवाद नुकसान उन, कि स्याही जो है ये नुकसान है, इससे कपड़े की कीमत कम हो जाती है, फला यूजिब इनकिता हकिल मालिक, लिहाजा ये मालिक के हक को मुनकते करने को साबित नहीं करेगा, इसकी वजह से मालिक का हक कपड़े से खत्म नहीं होगा। तो कहते हैं फला यूजिबू, लिहाजा ये स्याही जो है ये साबित नहीं करती इनकिता हकिल मालिकी, कि मालिक का हक मुनकते हो गया है, लिहाजा ये कपड़ा वापस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई भाई, हल हो गया, चलिए बस भाई। हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।